ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णुपाल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों का श्री वृंदा कुंड में स्वागत है। हरी बोल। वृंदा कुंड ये नंदगांव में है। अभी हम सब लोग नंदगांव में आए हैं और नंदगांव वृंदावन धाम में है और वृंदावन धाम मथुरा मंडल में है और मथुरा मंडल उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में है। ये भगवान की बड़ी प्रिय स्थान है भारतवर्ष। पृथ्वी में भारतवर्ष भगवान को बड़ा प्रिय है। भारतवर्ष में जहाँ पर कृष्ण ने जन्म लिया वो मथुरा मंडल और ज़्यादा प्रिय है। फिर मथुरा मंडल में उनके 137 इतने वन उनको बहुत प्रिय हैं। उनमें से 108 उनको अधिक प्रिय हैं। उन 108 में से उनको 12 ज़्यादा प्रिय हैं। उन 12 में वृंदावन सबसे ज़्यादा प्रिय है। और श्री वृंदावन धाम में क्या क्या आता है? श्री वृंदावन धाम में यमुना आती है, गोवर्धन पर्वत आता है, वृंदा का वन भी आता है, नंदगांव भी आता है, बरसाना भी आता है और जावट भी आता है और बीच में छाता खायरा वो सब कुछ इसके अंदर आता है। एक है अभी का वृंदावन जो भी पोस्टल एड्रेस के अनुसार बना हुआ है। एक है पौराणिक वृंदावन। तो पौराणिक वृंदावन 20 कोस का है और ये पौराणिक वृंदावन के अंदर नंदगांव बरसाना और जावट ये बहुत ही स्पेशल जगह है क्योंकि वृंदावन में बहुत राक्षस आए लेकिन जावट नंदगांव और बरसाना में राक्षस नहीं आए। बोलो हरि बोल। तो ये भगवान की बड़ी विशेष भूमि है। वृंदावन भगवान को सर्वोच्च प्रिय है। आप एक नाम अगर जालना में मुंबई में उत्तर प्रदेश में किधर भी लेंगे तो उसका भी बहुत लाभ है लेकिन जैसे ही आप वृंदावन धाम में आते हो तो 100,000 बार पद्म पुराण में लिखा है 100,000 बार उसका आपको असर मिलेगा। उसमें आप कार्तिक में आएंगे तो उसके आप 1,000 बार और मल्टीप्लाई कर दो उसको। इसलिए धाम की यात्रा है ना, वो धाम की यात्रा भगवान का नाम नहीं करना है तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। हाँ, जैसे शराब के अट्टे पर जाकर दारू पीना नहीं तो जाना ही नहीं चाहिए वहां पर, है ना। लोग बोलेंगे इधर क्या कर रहा है, तो दूध पीने को आया क्या। वैसे अगर धाम में आना है तो भगवान का नाम नहीं लेना है तो यहाँ पर आयो मत। यहाँ पर आना मतलब आपने कई जन्मों में पुण्य किया है, हजारों जन्मों में जो पुण्य किया है ना उसके फल के रूप में आप लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसा मत समझना कि अरे प्रभु जी मिल गए टिकट निकाल दिया चलो भाई घूमने जाएंगे इसलिए आप आ गए। नहीं, यहाँ पर नहीं आ सकता कोई ऐसा। जब तक राजा रानी की कृपा नहीं होती है, और वो कृपा कब होती है, जब आपने पिछले जन्मों में कई जन्मों में संतों का सेवा जाने अनजाने में किया होगा या पुण्य किया होगा उसके फल के रूप में आप वृंदावन में प्रवेश कर सकते हो। ये जो मिट्टी है ना, ये जहाँ जहाँ घूम रहे हो आप लोग, हाँ, वो सब में कृष्ण का पाँव लगा हुआ है। वैकुंठ में भी कृष्ण का पाँव जमीन को लगता नहीं है क्योंकि वो चप्पल पहनते हैं, मखमल में घूमते हैं, रथ में चलते हैं। द्वारका में भी रज अवेलेबल नहीं है, जगन्नाथपुरी में भी नहीं है, श्रीरंगम में नहीं है, बद्रीनाथ में भगवान का चरणों का रज अवेलेबल नहीं है। खाली दंडकारण्य में राम प्रभु का नंगा पैर लगा था वनवास में, लेकिन भगवान का और कहीं पैर लगा नहीं है। यही भूमि है जहाँ पर भगवान का पैर लगा है। इसलिए भगवान के चरणों की धूल धूल जो बोलते हैं ना वो केवल यहाँ पर है। सारे वैकुंठ के विष्णु भगवान भी यहाँ पर चरणों की धूल लेने आते हैं, सारे देवता लोग भी यहाँ पर चरणों की धूल लेने आते हैं। ऐसा ये पवित्र स्थान है। आप लोगों के पास अगर कभी सपनों में सोच सकते हैं आप, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप में सब वैकुंठों का धन आपके पास आ गया, अच्छा विचार है ना आपका, कैसा लगता है विचार ये कि सब वैकुंठ का धन आपका है। अगर हो भी गया वो तो वो सारा वैकुंठ का धन लेकर भी यहाँ का कर्ण एक रज का आप खरीद नहीं सकते, इतनी कृपा इसमें बड़ी हुई है। तो सब देवता जो शंकर जी ब्रह्मा जी इंद्र चंद्र सब वरुण देवता वायु सब लोग यहाँ पर चरण धूल लेने के लिए आते हैं। ऐसा पवित्र स्थान है ये। और यहाँ पर आकर आप जो भजन करता है उसी के लिए इस धाम का गौरव प्रकट होता है। और जो भजन नहीं करता है वो तुम्हारे बीच में रहेगा फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। भजन बहुत जरूरी है, भजन के द्वारा भगवान की कृपा आपके पास प्रवेश करती है। भजन नहीं होगा तो भगवान की कृपा के अंदर भी रहोगे आप तो भी सूखे रहोगे। ये समुद्र के अंदर जाओगे तो पानी पी सकते हो क्या आप? सब खारा पानी है, वैसे हमारी अवस्था हो जाएगी। अंदर है फिर भी प्यासे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने भाग्य को अपने ही दुर्भाग्य में रूपांतर नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने भाग्य को जो हमने इतना प्राप्त किया है उसको दुर्भाग्य में बदल सकते हैं अपने ही कार्य से, अपने ही क्रिया से। और मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। मनुष्य जीवन में ये जो पल है ना, जो आप यहाँ बैठे हो, ये जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। जो भी आपको 7 दिन 4 दिन 3 दिन मिले हुए हैं, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का प्रसाद, सब रसमय है, सब कृष्ण की कृपा से भरा हुआ है। राधा रानी के कृपा बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आप सब लोग राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर चुके हो, लेकिन वहाँ पर प्राप्त करने के बाद, आने के बाद आलस्य करोगे, मुँह नहीं खोलोगे, हाँ कथा में सो जाओगे, कथा का ग्रहण नहीं करोगे, तो उसको दुर्भाग्य में उसका रूपांतर हो जाएगा। इसलिए आपको विनती करता हूँ कि जिसको नींद आएगी वो खड़ा हो जाएगा लेकिन कथा सुनेगा, क्योंकि भगवान का नाम 4 चीज़ें हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप जो आप विग्रह का दर्शन करते हैं ना, और भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये 4 चीज़ भगवान से अलग नहीं है, सेम है। जैसे भगवान है वैसा उनका नाम है, जैसे भगवान है उनकी लीला है, जैसे भगवान है उनका धाम है, जैसे भगवान है उनका धाम है। लेकिन एक फर्क है उसके अंदर, भगवान से भी ज़्यादा दयालु भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है और भगवान का धाम है। भगवान से भी अधिक दयालु है। भगवान एक बार माफ़ नहीं करेंगे लेकिन धाम आपको माफ़ करेगा। क्या प्रूफ है उसका? ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए ना भगवान के, तो एक जगह लिखा हुआ है कि भगवान ने उनको माफ़ नहीं किया, क्योंकि अपने भक्तों को उनको अलग कर दिया ना उन्होंने। अरे अच्छे खेल रहे थे बच्चे, सब भगवान के साथ में, सबको चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, गुफा में बंद कर दिया, है ना, वो क्या कहते हैं, सम्मोहन विद्या डालकर सुला दिया सबको। तो भगवान को बहुत अच्छा नहीं लगा। नहीं, इंद्र ने भी अपराध किया था लेकिन इंद्र ने भगलों सबको इकट्ठा कराया, है ना, गोवर्धन के नीचे, लेकिन इन्होंने सबको विलग कर दिया। तो बाद में पछताए, हमेशा ऐसा होता गलती करने का फिर माफ़ी मांगने का, तो भगवान को अच्छा लगता नहीं है। भगवान ने उनको माफ़ नहीं किया। उस समय ब्रह्मा जी ने क्षमा प्राप्त करने के लिए पश्चाताप के भाव से इस रज में परिक्रमा किया है, 84 कोस का, चलकर नहीं दंडवती परिक्रमा किया है। दंडवती का समझते हो मतलब क्या होता है? एक दंडवत करना, फिर दूसरा दंडवत करना, तीसरा करना, पत्थर रखे, वो एक एक दंडवती हो गई। कुछ लोग 108 दंडवती भी करते हैं, एक जगह 108, फिर 108, फिर 108, कई महीने लगते हैं उसको। तो ब्रह्मा जी ने दंडवती परिक्रमा लगाया तो भगवान के द्वारा भगवान के लिए किया हुआ अपराध उनका क्षमा हो गया। काले हो गए थे वो अपराध से, सब तेज नष्ट हो गया था उनका। जब यहाँ पर रज में दंडवत किया, उन्होंने रज का स्पर्श करते करते धीरे धीरे तेज वापस आया और परिक्रमा पूरा किया तो अपने पूरे तेज को वापस प्राप्त किया उन्होंने। ये ब्रह्मा की अगर स्थिति है तो हम लोग कौन है बताओ? हम लोग की क्या पोजिशन है? इसलिए यहाँ पर जो आके भजन करेगा, जितना भजन करेगा उतना धाम का गौरव आपके लिए प्रकट हो जाएगा। और जितना आकर यहाँ पर आप जो कोई कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग और कुछ गलत काम करते हैं, किसी को फंसाते हैं, लुटाते हैं, चोरी करते हैं, गलत करते हैं, किसी को बुरा भरा बोल देते हैं, अपराध कर देते हैं, उन लोगों के लिए एक तो अपराध लग जाता है वो अलग बात है, उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है, और साथ साथ में धाम अपना जो है ना गौरव बंद कर देता है। समझो मेरे पास एक कटोरी है तो पूरा उसके अंदर मैंने ज्वेल मतलब अलंकार भरे हुए हैं, तो मैं किसको दिखाऊंगा? जो मेरे विश्वासु है उनको दिखाऊंगा, जो विश्वासु नहीं है बंद कर दूंगा, किसी को दिखाऊंगा कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे ये एक बड़ा अमूल्य धन का भंडार है वृंदावन धाम, तो भगवान भी उनको ही खोल के दिखाएंगे जो प्रामाणिक भक्त हैं, शुद्ध हृदय है, परोपकारी जीव हैं, भजनानंदी जीव हैं, उनको प्रकट करेंगे। और फिर यहाँ पर आके जो अपराध करेंगे, तू मैं करेंगे, झगड़ा करेंगे, ब्रजवासियों को अपराध करेंगे, धाम को सामान्य समझेंगे, ऐसा सब करेंगे ना, तो बोलते हैं ना हिंदी में, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। आप लेने आए थे कृपा और अपराध करके भयंकर फटका खा के चले जाएंगे यहाँ से। इसलिए धाम में आने के लिए ना पहला मूड बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग ने बैग भरा कि नहीं आते वक्त? सब लोग बैग भरा कि नहीं? कोई गर्म कपड़ा भी लिया, कोई टूथपेस्ट लिया, कोई कुछ लिया, कोई कुछ लिया, दवा लिया, बहुत सारा चीज लिया ना आपने साथ में, मतलब क्या आप तैयारी कर रहे हो जाने के लिए। वो एक तैयारी है, एक तैयारी इधर की होती है, भावना की तैयारी होती है। जब तक भावना की तैयारी नहीं होती है, आप बैग लेकर आएंगे बिना स्पर्श किए वापस चले जाएंगे सूखे सूखे। इसलिए अभी तो ये एंड में बता रहा हूँ मैं आपकी यात्रा के लेकिन आपने बताया बहुत अच्छा किया बहुत, क्योंकि ये धाम कोई हिल स्टेशन नहीं है, माथेरान महाबलेश्वर नहीं है। हम लोग घूमने नहीं आते यहाँ पर, हम लोग भगवान की कृपा लेने आते हैं। यहाँ पर हम लोग भगवान के चरणों में आश्रय लेना आते हैं, भगवान को अपने चरणों में उनके चरणों में अपने को अर्पण करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। अपना सर्वस्व उनके चरणों में रखने के लिए आते हैं, सब कुछ छोड़कर अपना धंधा वंदा जो भी कुछ है कुछ समय के लिए बंद करके अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में डालने के लिए, उनका आश्रय लेने के लिए, और प्रेमी भक्तों के साथ में उनके स्थानों का दर्शन करने के लिए। इन्होंने यहाँ पर गिरिराज को उठाया था, इन्होंने यहाँ पर ये किया था, इन्होंने यहाँ पर माखन चुराया था, इन्होंने यहाँ पर जन्म लिया था, ये सब स्थानों का प्रणयी भक्तों के साथ में दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि ये यात्रा करना जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रूप गोस्वामी द्वारा 64 तत्व दिए हैं, 64 काम बताए भगवान की भक्ति में करना चाहिए ऐसे, उसमें से 6 काम बहुत इम्पोर्टेंट बताए। 64 नहीं जमेगा तो एक बात है लेकिन 6 तो करना ही है। उसमें से पहला है भगवान के नाम का जप, दूसरा है भक्तों का संग, तीसरा है श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन, चौथा है भगवान के जो मूर्ति है उसकी पूजा, और पांचवा है भगवान के धाम में निवास, और छठवा है तुलसी महारानी की पूजा। एक बार और बताते हैं, भगवान के नाम का जप, दूसरा भगवान के भक्तों का संग, तीसरा श्रीमद् भागवत आदि प्रमाणित शास्त्रों का अध्ययन, चौथा भगवान के विग्रहों की पूजा डीटी वर्शिप, और पांचवा भगवान के धाम में निवास, और छठवा तुलसी की पूजा। तो भगवान के धाम का निवास शायद एक दिन का हो, आधा घंटे का हो, 7 दिन का हो, 4 दिन का हो, वो भी वास ही है धाम वास। अगर रहने को फुल टाइम मुमकिन है तो फुल टाइम, नहीं तो आना जाना चलता रहना चाहिए। एक साल में कम से कम एक बार सब कुछ छोड़कर धाम में यात्रा करनी चाहिए, भक्तों के साथ में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। ये जीवन की परिपूर्णता है, नहीं तो फिर गधा भी जीता है, कुत्ता भी जीता है, बिल्ली भी जीती है, और सुअर भी जीता है, क्या फर्क है उसके अंदर बताओ। वो भी खाते पीते रहते हैं, सब कुछ सेक्स करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, फैमिली संभालते हैं, हम लोग क्या बड़ी तारे तोड़ रहे हैं। हम लोग का जीवन तभी व्यवस्थित महत्वपूर्ण है जब हम ये सब करते हुए कर्तव्य को निभाते हुए शरीर को संभालते हुए भगवान को जब हम लोग अनुशीलन करेंगे, भगवान को अपना लेंगे, भगवान को सर्वस्व बनाएंगे, तो हम मनुष्य कह सकते हैं अपने आप को। नहीं तो मनुष्य जीवन बोल के भी गधा जीवन है हमारा, द्विपद पशु ऐसे भागवत में लिखा है। जो लोग भगवान के भजन के बिना जीते हैं मनुष्य बनकर, वो 2 पैर के पशु है, बाकी 4 पैर के हम 2 पैर के। आपको सबको आज जाने का लास्ट दिन है आपका, कल जाएंगे आप लोग, सबको हृदय में हजारों बार धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ना इंद्रादि देवता भी नहीं पहुँच सकते। आपको पता है क्या कि इंद्र वायु चंद्र वरुण जितने भी देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती और गणेश, इनको छोड़ के ब्रज में किसी को नाइट स्टे का अलाउड नहीं है, कोई नहीं रह सकता यहाँ पर। सब लोगों को दिन में आना है, अपना अपना वाहन जो है ना, मोर है किसी का कुछ कुछ वाहन है, वो सब वृंदावन मंडल के बाहर पार्किंग करना है, उसका जूता बूता वहां उतरना है, नंगे पैर में अंदर आना है, दिन में मीटिंग करना है भगवान से और हरि बोल हो जाना है। इधर रात को रहने का देवताओं को परमिशन नहीं है। आकाश में आकर ऊपर से देख सकते हैं वो क्या चल रहा है, लेकिन नीचे उतरने का अधिकार नहीं है उनको। जब भगवान बुलाएंगे तभी आ सकते हैं। यहाँ पर देवताओं को भगवान का महाप्रसाद मुमकिन नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी आए थे, बोले भगवान तो यमुना किनारे बैठकर वो भोजन करते हैं ना, रोज भोजन करते हैं, वो अच्छा कमलाकार बैठ के फर्स्ट क्लास भोजन करते हैं, फिर यमुना जी में हाथ धोते हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ लगता है ना, चावल थोड़ा सा जूठा लगता है कि ना, दाल का पानी लगता है, तो वो उधर मैं पी लूंगा मछली बनकर। मछली बन गए, यमुना जी में घूम रहे, अभी आएंगे भगवान, अभी आएंगे, हाथ धोएंगे। फिर वो मछली घूम रही है ब्रह्मा जी, फिर भगवान खाना खा के हाथ धोने गए तो देखा, अरे तो ब्रह्मा जी मछली बना हुआ है, दोना में पानी लिया और जमीन में धोया, समझे आपको। ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है और आप लोग इतने भाग्यवान है, इधर आपने दिन रात 4-5 दिन निवास किया है, रोज महाप्रसाद खाया है, हर जगह दर्शन किया है, आचमन किया है, क्या नहीं किया आपने, रज में लौट रहे आप लोग। धन्यवाद दो भगवान को, जो देवताओं को भी मुमकिन नहीं है, नारद सुखदेव आदि लोगों को भी मुमकिन नहीं है, वो आप लोगों को सहसा प्राप्त हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, अभी बच्चा होगा ना, उसको कोहिनूर का हीरा देंगे तो क्या करेगा, बॉल बॉल खेलेगा उसके साथ, है ना। तू कैच पकड़, मैं कैच पकड़ता हूँ। अनपढ़ औरत को देंगे ना तो वो कपड़ा धोने के लिए उसको यूज़ करेगी, बोला अच्छा है साबुन ये, मतलब क्या पत्थर अच्छा है धोने के लिए, क्योंकि अज्ञान है ना, पता नहीं है कोहिनूर हीरा है। लेकिन अगर ज्ञानी व्यक्ति को कोहिनूर हीरा देगा ना, अरे बाप रे, 50 बॉक्स बनाएगा उसके अंदर ऊपर ऊपर, और कबड़ के अंदर 4 चाबी लगा के अंदर रख देगा उसको, वो किसी को दिखाएगा नहीं, इतना अमूल्य है वो। वैसा आपका ये ब्रजवास बहुत अमूल्य है, लेकिन कभी ज्ञान नहीं होगा ना तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, क्या रे गुलाब जाम नहीं मिला, मैं बैठा तभी तक तो वो ख़त्म हो गया था, मैं गया तो भी वही ख़त्म हो गया, रूम में क्या रे वो अच्छा रूम नहीं मिला, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसे हम लोग कंप्लेन करते रहेंगे। बस में भी फ्रंट सीट नहीं मिली, पीछे का मिला, ये लोग सब आगे घुस जाते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। ये जो मनोवृत्ति है ना, इसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ का एक एक क्षण, आप जो सांस ले रहे हैं ना सांस, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। यहाँ का जल पी रहे हैं ना, रसमय जल है यहाँ का, अनंत जन्मों की जो संचित है हमारे गलत इच्छाएं वो सब धुल रही हैं, मतलब होलसेल में धुल रही है एक साथ में, इंटेंस बोलते हैं उसको, तीव्र। तो ये महत्व समझना बहुत जरूरी है। जब तक मन में इस प्रकार का प्रकाश नहीं पड़ता है तब तक हमारा सारा परिश्रम बेकार है। पहले भावना होनी चाहिए, भगवान को आपके रुपये में आपका दर्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है ना, आपका पैसा, आपका कपड़ा लत्ता, आपका जो इज्जत है, आपका जो अधिकार है, आपकी पावर है, जो भी आपका गांव में होगा वो सब उनका ही दिया हुआ है। उसमें क्या उनको दिखा के, क्या सूरज को क्या दीपक दिखाओगे, क्या उसमें इंप्रेशन क्या मारोगे उनके ऊपर। लेकिन आपका खुद का क्या है इसमें, आपका खुद का आपका भाव है, आपका प्रेम है ना। आपका बच्चा छोटा सा आपको आपके बर्थडे पर, मम्मी के बर्थडे पर एक चॉकलेट ला के देगा 5 रुपये का, और बोलेगा मम्मी हैप्पी बर्थडे, तो मम्मी क्या बोले, रेट सब मेरे से ही पैसा लेके मेरे से चॉकलेट देता है, ऐसा मम्मी नहीं बोलेगी। मम्मी वो चॉकलेट 5 रुपये का है वो देखेगी नहीं, मम्मी देखेगी कि बच्चे ने प्रेम से दिया है, उस प्रेम को देखकर वो गले लगाएगा, चुम्मा लेके आंसू बहाएगी, देखो मेरे बच्चे ने याद रख के मेरे लिए बर्थडे के लिए वो चॉकलेट लेके आया है। तो 5 रुपये का है कि 10 रुपये का है उसमें कोई मतलब नहीं है, प्रेम है ना उससे मम्मी प्रभावित हो जाती है। वैसे ही हम लोग भगवान को कुछ भी इम्प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाव को अगर व्यक्त करेंगे हृदय का, तो भगवान क्या आपको, अपने आप को बेच देंगे भगवान आपको, भगवान को आप खरीद सकते हो प्रेम से। तो वो प्रेम जो है, वो प्रेम का रस जो है, वो प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, साइट सींग पिकनिक करने को नहीं आए हैं। अरे ये भी देखा, वो भी मत्था टेका, उसको हम लोग बोलते हैं मत्था टेक यात्रा। हम लोग मत्था टेक यात्रा नहीं करते हैं, हम लोग शरण लेने के लिए आते हैं, उनको अपना दिल अर्पण करने के लिए आते हैं, उनको अपना बनाने के लिए आते हैं, वो हमको अपना बनाए इसलिए आते हैं। ये हमको अगर समझ में आया ना, एक स्थान दर्शन करो, आप 50 जगह मत जाओ, एक स्थान दर्शन करो, उस स्थान को दिल में ग्रहण करो और बंबई में जाकर उसी का चिंतन करो, आपकी यात्रा सफल है। इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ, एक नोटबुक रखो और लिखो उसके अंदर क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, और बंबई जाके उसका रिविजन करो, उजड़नी करो बंबई जाके, सोचो उसके बारे में क्या देखा, कहाँ क्या देखा, कहाँ दर्शन क्या किया। नहीं तो क्या, प्रभु जी ने मेहनत किया, सब व्यवस्था किया, 50 जगह लेके गया, कुछ भी बंबई में आके याद नहीं, एक सवाल पूछेगा तो मालूम नहीं क्या बोला। लेकिन मैंने अगर डांट दिया आपको, कुछ कठोर शब्द में बोला तो याद रहेगा, वो प्रभु जी आए थे ना वृंदाकुंड में, बहुत डांटा था उन्होंने हमको तो उस बहाने वृंदाकुंड याद रहेगा। मेरे भाई को एक बार लेके आया था ना मैं, तो सुदेवी के गाँव में गया था मैं, सुनेरा गाँव में, तो मेरा भैया एकदम सफेद चकाचक कुर्ता और सफेद कुर्ता और लहंगा पहनकर चल रहा था, अचानक गटर में गिर गया पूरा, ऐसा फुल पूरा कुर्ता पूरा काला हो गया। तो पूरा याद है उसको कि वो गांव सुवर सुदेवी का, उधर मैं गिरा था। तो बोलो अभी गिरना अच्छा था कि बुरा था, वो तो अगर उस चीज से आपको याद आ रही है सुदेवी के गांव की, तो आपका यात्रा सफल हो गया ना वो, तभी आपको बोलेगा अरे क्या परेशान हो गए, मैं उनको ब्रजवासी के घर पे ले गया, स्नान वान कराया, कपड़ा धुलवाया उसका, फिर उसको कथा सुनाई और फिर ले गया बस। तो ऐसे किधर कांटा लग गया, किधर पत्थर लग गया, किधर गिर गया फिसल के, याद रहेगा पता है वृंदा देवी के पास में गिर गया था। हाँ आज क्या बोलेंगे, अरे पता है आज गए थे ना तो वृंदा देवी का विवाह है, आज तुलसी विवाह का दिन है इधर, आज देखो कितने भाग्य की बात है हमारी, हमने आपको कोई प्लानिंग नहीं किया था, लेकिन भगवान कितनी कृपा करते हैं। देखो शनिवार का दिन था, टाइम था, चलो चलेंगे, तो अभी 9 बजे यहाँ पर तुलसी विवाह का उत्सव चालू हो जाएगा, इतना सुंदर विग्रह बना के रखा है उनका, अभी यज्ञ करेंगे, उनका होम करेंगे, विवाह संस्कार करेंगे उनके ऊपर, तो हमको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान ना हमारी अपेक्षा से ज्यादा कृपा वर्षा करते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि भाई क्या है खाने में, हाँ वो क्या नॉर्मल खाना है, लेकिन भाभी जाकर देखेंगे 15 आइटम है, हमने अपेक्षा नहीं किया था, हम तो 4 आइटम के लिए गए थे लेकिन 15 आइटम खिला रहे हमको, वाह क्या बात है। इसको कृपा कहते हैं। कभी कभी ना हम लोग सोच भी सकते नहीं उतनी कृपा भगवान कर देते हैं। या आज की कृपा भी ऐसी है, मैं आके दंग रह गया। मैं आज क्या है क्योंकि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन में सब जगह पर तुलसी विवाह चलते रहता है, कोई एकादशी को करते हैं, किसी भी दिन करना प्रमाणित है। तो आज द्वादशी में यहाँ पर होता है, देखो आप महाराष्ट्र में सब लोग पूर्णिमा के दिन करते हैं। तो ये तुलसी विवाह की कथा ऐसी है, पहले स्थान की कथा करनी चाहिए फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा तो टाइम का भी बताना मुझे। तो तुलसी देवी, इसका मूल नाम वृंदा देवी है, और ना एक वृंदा देवी नहीं, बहुत प्रकार की वृंदा देवी है। एक वृंदा देवी केदार की कन्या है, एक वृंदा देवी जालंधर की पत्नी है, एक वृंदा देवी स्वयं राधा रानी है, वैसे कई वृंदा देवी है, लेकिन एक वृंदा देवी जो है उसको, वो गौलोक वृंदावन में सखी है भगवान की, तो उसको शाप मिला तो जालंधर राक्षस की पत्नी बनी। भगवान की बड़ी भक्त थी वो, अभी भी है और हमेशा रहेगी। तो जालंधर राजा दो ना वो क्या कहते हैं उसको, अपराजित हो गया, मतलब सब देवताओं को हरा रहा है। क्यों? वृंदा देवी के पतिव्रत की वजह से। वृंदा देवी बहुत पतिव्रता थी, उसके बल से उसके ऊपर सुरक्षा कवच तैयार हो गया, तो वो और उद्दंड हो गया और राक्षसों को परास्त करने लगा, वो उनको हरास करने लगा, उनको कष्ट देने लगा। तो सब देवता लोग विष्णु के पास गए, बोले क्या करना है इसका, अभी ये तो दिन ब दिन शक्ति बढ़ रही है इसकी। तो बोला कि इसकी शक्ति जो है ना वो उसकी पति की पत्नी की पतिव्रता होने के कारण है, तो कैसे भी करके इसका पतिव्रता, जो नारी है उसका पतिव्रत्य अगर भंग करेंगे तो इसका सुरक्षा कवच टूट जाएगा, फिर हम उसको मार सकते हैं। तो विष्णु बोले चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ। तो विष्णु ने भगवान को, ने देवताओं को बताया दोबारा उसको आप आक्रमण करो उसके ऊपर। तो डर रहे थे, इतनी बार तो मार खा चुके, अभी आक्रमण कैसे करेंगे, और एक बार मार खाना है क्या। तो बोले जाओ जाओ मैं आ रहा हूँ। तो भगवान के भरोसे उन्होंने दोबारा चैलेंज दिया उनको, तो वो बोल रहे अरे अभी तो पीट कर आया था उनको, अभी इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो वृंदा देवी बताती है उनको, अरे मत जाना, देखो हारा हुआ व्यक्ति जब दोबारा आक्रमण करता है ना, कुछ बल लेकर आ रहा है वो। बोला कोई बल आने के मैं डरता डरता हूँ, मैं जाऊँगा। बोले सावधान रह के जाओ, नहीं मैं जाऊँगा। और जाके युद्ध लड़ता है, तो युद्ध में वापस वो पीटने लगते हैं देवता लोग। तो वो सोचते अरे भगवान ने बताया जाओ आक्रमण करो, पीटने के लिए भेजा था क्या हमको। उतने में युद्ध जब आगे बढ़ रहा है तो भगवान वहां पर जालंधर का रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं वृंदा देवी के घर में। तो कहते हैं युद्ध जीत के लौट के आए तो उनका तिलक करती है, स्वागत करती है, सेवा करती है, फिर अंतपुर में उनका संबंध हो जाता है पति पत्नी का। जैसे ही पति पत्नी का संबंध, मतलब भगवान विष्णु का जालंधर के रूप में वृंदा देवी के साथ संबंध होता है, वहां पर शिव जी का त्रिशूल उसके गले में घुस जाता है। तो उसको खुद को आश्चर्य होता है, इतना बार चला है त्रिशूल कभी अंदर नहीं घुसा, आज कैसे गले में घुस गया। तो उधर से ही पुकार रहा है वृंदा वृंदा क्या हो गया क्या हो गया, गले में त्रिशूल घुसा हुआ है। वैसे ही कटा हुआ शरीर त्रिशूल को लटकता हुआ घर पे आता है आकाश में, पूछते पूछते वृंदा देवी क्या हुआ। तो वृंदा देवी सोच रहे अरे आवाज कहाँ से आ रही पत्नी की, पति मेरे साथ में है और पति की आवाज कहाँ से आ रही है, तो बाहर आती है। वो देखते त्रिशूल लगा हुआ सर पुकार रहा है वृंदा क्या हुआ। तो इनको देखती है ये कौन है, तो इसकी नजर इतनी पावरफुल थी पतिव्रता की नारी की कि वो नजर जैसे ही विष्णु पर पड़ती है तो विष्णु अपना जालंधर का रूप संभालना मुश्किल हो जाता है, उनको विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं, इतनी शक्ति है पतिव्रता नारी के नजर में। अपना जो छल था ना, छद्म था, वो भी खत्म हो गया विष्णु का। तो वृंदा देवी बहुत क्रोधित हो गई क्योंकि उसका पतिव्रत भंग कर दिया, शील भंग कर दिया, इसलिए पति की मृत्यु हो गई, तो पति की मृत्यु होना मुमकिन नहीं था। तो वृंदा देवी ने शाप दिया विष्णु को कि तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान ने भी उनको शाप दिया कि तुम भी एक पौधा बनोगे और तुम्हारे चरणों में पत्थर बन के मैं रहूंगा। तो वो पत्थर जो है वो शालिग्राम शिला है और जो पौधा जो है वो तुलसी का पौधा है, क्योंकि परम भक्त है भगवान की, परम भक्त है वो, ऐसा नहीं लीला कर रहे हैं वो। और वो फिर वृंदा देवी जलंधर के कटे हुए मरे हुए सर को गोद में लेकर सती जाती है और फिर पृथ्वी पर तुलसी के रूप में प्रकट हो जाती है। फिर पृथ्वी पर उनका विवाह होता है कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक। ये तुलसी विवाह का कथा है। तो ये हम लोग ना बंबई में अपना गांव में भारतवर्ष में बहुत उत्सव मनाते हैं। क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, ढेंगड़ेंग ढेंगड़े नाच करते हैं, हो गया उत्सव अपना। नवरात्रि में भी वही करते हैं, गणपति में भी वही करते हैं, और दशहरा आएगा तो भी वही करते हैं। अपना टाइम पास क्या करना है वो देखते हैं, खाना पीने को मिलेगा, दारू पीने को मिलेगा, ताश खेलने को मिलेगा, जुआ खेलने को, यही अपना उत्सव है। किसको पता है उत्सव के पीछे क्या रहस्य है? हमको पता होना चाहिए। हमारा भारतवर्ष इतना गौरवशाली देश है, इसके अंदर हर एक दिन उत्सव है। आप कहाँ देखो, पूरब में देखो, पश्चिम में देखो, हर जगह पर उत्सव उत्सव है। इधर मन को उदास होने के लिए टाइम नहीं है बीच में। अरे गणपति खत्म हो गए तुरंत नवरात्रि चालू, नवरात्रि खत्म होते ही तुरंत दशहरा, वो इधर देखते देखते दिवाली, हाँ फिर जगन्नाथ का उत्सव, फिर इसका उत्सव, फिर उसका, राम का उत्सव, फिर किसी का उत्सव, फिर मकर संक्रांति, करते जाओ, कोई टाइम नहीं है। लेकिन हर एक उत्सव के पीछे हमारे लिए कुछ सूचना है, कुछ शिक्षा है, कुछ उपदेश है, और वो लीला सुनने में कितना आनंद है, मन कभी उदास होगा नहीं आपका। तो इस तरह से ये वृंदा देवी का स्थान है। आप कह सकते हैं कि उनका घर भी है और इनका हेड ऑफिस भी है। इनकी ना बहुत विशेष सेवा है। इनकी विशेष सेवा ये है कि भगवान की, राधा रानी की साथ में जो जो लीला होती है वो सबका आयोजन, व्यवस्थापन वृंदा देवी करती है। उनको कहाँ पर मिलाना है, कौन से कपड़े पहनाना है, क्या भोजन खिलाना है, क्या ड्रिंक देना है पीने के लिए, कौन सा डांस करना है आज, कौन सा गीत गाना है, कौन सा वाद्य बजाना है, कौन करेगा, किधर करेगा, किस समय करेगा, आने के बाद क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे, एंड में क्या करेंगे, इसका पूरा सूर्यास्त से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जो लीला होती है उसका पूरा डायरेक्शन, प्रोडक्शन, वो सब कुछ वृंदा देवी करती है। उनके पास 1000 तोता हैं। आप देखिएगा ना गौर से, लेफ्ट हैंड में कौन है, एक तोता बैठा हुआ है, उसका नाम लीला सुख है, लीला सुख। उसके अंदर 1000 तोता हैं, और 1000 में से एक एक तोता के अंदर करोड़ों तोता हैं, असिस्टेंट, पूरे ब्रज में जाते हैं, क्या क्या चल रहा है उसकी खबर लेके आते हैं। ऐसा नहीं इधर एक्सीडेंट हो गया, उधर गाड़ी नदी में गिर गई, उधर किसी ने किसको चाकू मारा, उधर किसी ने बलात्कार किया, किसका पॉकेट मारा, ये सब न्यूज़ नहीं देते वो। कौन सा रंग खिला हुआ है, कौन सा फूल खिला हुआ है, कैसा वातावरण है, कौन सा ऋतु है, ऐसा सब बहुत सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं, जो पेपर में कभी आता नहीं है। पेपर में खाली वही नेगेटिव बातें आती है ना, जो सुननी नहीं चाहिए, जो हमारे आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसी खबर आती है। इनकी खबर सुनेंगे ना, सुन के ही पवित्र हो जाएंगे आप। क्या बोलेंगे, कुमुद वन में ना आज पीले रंग के फूल खिले हैं, सुंदर सुंदर हवा चल रही है, वसंत का ऋतु है, ऐसा ऐसा न्यूज़ देते हैं वो। पूरा संकलन करके उस न्यूज़ के ऊपर पूरे ब्रज का न्यूज़ आएगा उनके पास, संकलित करके ललिता विशाखा के साथ डिस्कस करेंगे, आज कहाँ लीला करनी है, तो वो बोलेगी कि काम्य वन में करनी है। फिर काम्य वन में वो स्टोर है उनका, स्टोर में जाकर सब खोलेंगे, सामान कपड़ा वपड़ा सब, खाना पीना बनाएंगे, सब योजना बनाएंगे, वहाँ पर राधा कृष्ण को लेकर आएंगे और शाम से लेकर सुबह तक लीला करेंगे। फिर बीच में होली आती है, फिर बीच में राधाष्टमी आती है, फिर बीच में झूलन का समय आता है, रास का समय आता है, बीच में ठंडी आती है, फिर गर्मी आती है। अरे यहाँ तक वो ऋतुओं को बुला लेते हैं। अभी देखो ठंडी का मौसम है, आपको बारिश की लीला करनी है आज, तो इंद्रदेव को बोलते हैं थोड़ा वर्षा करो आज, इतना इतना वर्षा हमको चाहिए, बादल भेजो इधर। ऐसा कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। वो सब करती है वो, क्योंकि वृंदा देवी को देवताओं के ऊपर पर अधिकार है, वो देवताओं को आदेश देती है। कभी कभी 6 में से 3 ऋतुओं को एक साथ बुला लेते हैं, जैसे भगवान का जन्म होता ना तो 6 ऋतु एक साथ प्रकट हुए थे, बोलो, एक ही साथ 6 ऋतु, और अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अरे भगवान है ना, आप लोग दिखा ना कि भाई हम लोग कितनी अच्छी सेवा करते हैं आपकी, तो हर ऋतु जो है ना अपना बेस्ट सेवा एक साथ में दे रहा है। कभी ऐसा होता नहीं है, कभी तो वसंत तो वसंत, वर्षा तो वर्षा, हेमंत तो हेमंत, ऐसा होता है ना। तो वैसे कौन से ऋतु का वातावरण निर्माण करना है ये भी इनके प्लानिंग में होता है, बोलो, इतना बढ़िया अरेंजमेंट करते हैं वो वृंदा देवी। इसलिए अष्ट सखी में ना होने पर भी वृंदा देवी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कृष्ण के लिए है। राधा रानी भी बहुत प्रेम करती है इनके ऊपर, इतना प्रेम करती है कि एक बार राधा रानी ने वृंदा देवी का अपने हाथों से कृष्ण के साथ विवाह कर दिया, और राधा रानी का खुद का जो वृंदावन जो भगवान को अति अति प्रिय है वो भेंट में दे दिया उसको, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। सोचो आप कितना प्रेम करते राधा रानी, क्योंकि राधा कृष्ण को मिलने की कितनी आस रहती है, उस मिलने का पूरा प्लानिंग वृंदा देवी करती है, सोचो आप। और एक स्थान ये भी है वृंदाकुंड, कभी अपने घर पे भी लीला आयोजित करती है ना। हम लोग सब जगह घूमते, कभी कभी घर में भी प्रोग्राम प्रोग्राम करते कि नहीं अपने, तो कभी कभी मिलन का कार्यक्रम इधर भी होता है। ये वृंदाकुंड जो है वो पब्लिक मिलन का स्थान है, मतलब पब्लिक मतलब पूरे पब्लिक के लिए नहीं है, सभी गोपियों के लिए है। और इसके पीछे एक स्थान है, उसका नाम है गुप्त कुंड। उसका रहस्य ऐसा है कि जब भी राधा कृष्ण को अकेले में केवल एक दूसरे को मिलने का दिल होता है और किसी को मिलना नहीं उनको, खाली एकांत में बैठना है, तो गुप्त कुंड में उसका आयोजन होता है। वहां पर सब व्यवस्था की जाती है, सब गोपियां वृंदादेव सब हट जाती हैं। और बीच में जब भोजन का एंड में जब निकलने का समय होता है, छोड़ने का समय होता है अंदर, तब तो जाती है, बाद में वहां पर छोड़ देते हैं उनको सेवा करने के लिए। हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी हमारा अभी मीटिंग है, सब लोग बाहर खड़े रहो, बाहर बैठो, तो खाली 5 दिन देने के लिए कोई अंदर आएगा, बीच में कोई भोजन देने के लिए अंदर आएगा, बाद में हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम बातें करेंगे, अपने जो करना है करते रहेंगे। वैसे प्राइवेट मीटिंग उनका गुप्त कुंड में होता है, और ये वृंदाकुंड में गोपियाँ सब मिल सकती है उनको। ये ना ब्रज की लीला में बहुत सारे अरेंजमेंट है, एक कभी कभी प्राइवेट लीला है, कभी कभी गिने चुने गोपियों के साथ ही मिलते हैं, 4-8 के साथ ही बस, और किसी को नहीं मिलना है, कभी सबको मिलते हैं, कभी रास रचाते हैं सबके साथ, अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं, उसको ब्रज लीला, कुंज लीला, निकुंज लीला, निवृत्त निकुंज लीला, अति निवृत्त निकुंज लीला, ऐसे बताते हैं अलग अलग प्राइवेट टाइम पे, सबको देखने वाली सबको नहीं देखने वाली अलग टाइप की लीला करते हैं। इसलिए सब लोग आप वृंदा देवी को प्रणाम करो, वृंदा देवी की कृपा से राधा कृष्ण का दर्शन होता है। नंबर 1, 3 चीजें होती है, हम लोग बोलते हैं रोज अपना, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमा, लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं, है ना। तो वो एक लाभ क्या है, तुलसी देवी की कृपा से राधा कृष्ण का दर्शन होता है। ये तुम्हारा शरण लोए तार वांछा कृपा होए, और क्या नहीं, पहला क्या है, मोरे यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। एक है दर्शन का लाभ, दूसरा है इस वृंदावन धाम में निवास का भेंट आपके लिए, और तीसरा है दासी के रूप में सेवा देगी आपको, वो भगवान की लीला में आपको भी थोड़ा सा सेवा दे देगी। 3 चीज करती है वो, इनकी कृपा से, इनके कृपा से भगवान का दर्शन होता है, इनकी कृपा से भगवान का धाम का वास मिलता है, इनकी कृपा से भगवान की सेवा प्राप्त होती है। और पौधे के रूप में इनके अनंत गुण हैं, ऐसा एक ही पौधा है दुनिया में जो 24 घंटा प्राणवायु देता है, बाकी सारे पौधे दिन में प्राणवायु, रात को कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसमें 300 प्रकार के दवाई और बीमारी का इलाज है तुलसी के पत्ते में। तुलसी का पत्ता पानी में डालने से सारी नदियाँ, विश्व की पवित्र नदियाँ उस जल में प्रवेश करती है। तुलसी का पत्ता किसी मौत करने वाले आदमी के मुंह पे रखा जाए तो वो नरक जाने से बच जाता है और भगवान के धाम की ओर बढ़ने लगता है। तुलसी का जो दंडी है ना, दंडी वो छाती पर रखकर किसी को जलाया जाए मौत के समय तो उसको नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। अब ये बोलने लगे शाम तक यही बोलेंगे, इतना इतना उसका महात्म्य है। समझने के लिए जरूरी है कि तुलसी का पत्ते के ऊपर कभी लांगना नहीं चाहिए, कभी पाँव नहीं गिरना चाहिए, अगर पाँव गिरेगा तो नरक में पहुंच जाएंगे हम लोग। तो तुलसी पत्ते का बहुत संभाल के सेवा करना चाहिए, तुलसी पत्ता की सेवा कर केवल तुलसी को जल देने से आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इतनी शक्ति तुलसी के पौधे में है। हमारे गांव में हमारे पुराने लोग इतने श्रद्धालु थे कि मेरी मम्मी 92 ईयर्स की है, आज भी वो बिना भूले सुबह उठते ही तुलसी को जल देती है, बोलो इतनी श्रद्धा है उनकी, मतलब ऐसा दिमाग में फिट है संस्कार उनका, कुछ समझ में नहीं, कुछ याद नहीं आता, बेटे का नाम नहीं, किसी का याद, किसी को पहचानती नहीं, लेकिन स्नान करते ही जाके तुलसी को जल देके आती है। ये हमको आदत लगाना है, ऐसा आदत लगाना है कि एंड में भगवान का नाम मुख में आ जाए और ऐसी कृपा हो जाए कि कोई ना कोई आकर तुलसी का जल हमको दे दे मुँह में, तो भगवान के धाम में पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये नंदगांव है, और नंदगांव में बहुत सारे स्थान है, अभी आपको 2 घंटा में 1 घंटा में क्या क्या बताएं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। नंदगांव जो है यहाँ पर शंकर भगवान पर्वत बने हैं, सबको पता है ब्रह्मा जी कहाँ पर्वत बने हैं, ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत बने हैं, कितना तपस्या किया, एकादशी का उपवास किया और ब्रह्मा जी पर्वत बने, ऐसा है क्या, 120,000 साल तपस्या किया सबसे पहले सत्ययुग में, उसके 60,000 के बाद में तपस्या रोक के काम शुरू किया निर्माण करने का। फिर वो सत्ययुग के एंड में दोबारा 60,000 साल तपस्या किया। वो 60,000 तपस्या मतलब 1,00,000 जब 20,000 पूरा हुआ ना तब भगवान ने दर्शन दिया। हम लोग को है क्या इतना इतना पेशेंस है क्या, इतना संयम हमारे पास है क्या? और हमारे ऐसा नहीं वो कुट्टू का लड्डू खा के और वो साबूदाना का खिचड़ी खा के और आलू का सब्जी खा के नारियल डाल के, वैसा उपवास नहीं होता है। कठोर तपस्या किया, फिर भगवान ने वरदान दिया, जाओ मेरे बरसाने में जाके पर्वत बनो। इसलिए चार मुख वाले पर्वत बने हुए ब्रह्मा जी वहाँ पर, उधर एक गहवर कुंड दिखा है उनको आपने, वो गहवर कुंड भगवान की ब्रह्मा की नाभि है, अम्बिलिकस नाभि है भगवान की। और लीला देखते हैं भगवान की, ममो उपरी क्रीड़ा करिष्यसि, ऐसा वरदान मांगा था तो भगवान अपने नंगे पैर से उनके सर पर लीला करते हैं, वो पिघल जाते हैं भाव से, ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं। तो वैसे ही शंकर भगवान ने तपस्या किया था, शंकर भगवान को भगवान ने दर्शन दे के आशीर्वाद दिया था कि नंदगांव में पर्वत बनूं। और विष्णु भगवान पे पत्थर बने, कहाँ पर बने? गोवर्धन पर्वत बने। मतलब क्या, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जो तीर्थदेव हैं वो सब लोग यहाँ पत्थर बने हुए हैं, सोचो आप। और हम लोग उन पर चलते हैं, गोवर्धन पे चलना मना है, लेकिन नंदेश्वर पर चढ़ते हैं हम लोग, ब्रह्माचल में चढ़ते हैं ब्रह्म बरसाने में। ये हमारा सोच सीखने के लिए हमारे लिए है कि सबसे बड़ा व्यक्ति जो है वो भी भगवान की सेवा के लिए पत्थर बनने को तैयार है, पत्थर बनकर पर्वत बनकर यहाँ विराजमान है और भगवान को लीला करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो तीसरा पर्वत विष्णु स्वयं गोवर्धन, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि गोवर्धन से भी अधिक भाग्यशाली नंदीश्वर है पर्वत, क्योंकि दिन रात वहां पर भगवान ने लीला किया है और बीच में कुछ कुछ समय गोवर्धन लीला के समय भगवान ने गोवर्धन में लीला किया है। 24 आवर्स दिन रात अपने पैरों का रज भगवान ने नंदीश्वर को दिया है। तो उसकी कथा यह है कि जैसे भगवान का जन्म होता है ना, मैंने कहा बताया कि देवताओं को भी दर्शन प्राप्त नहीं होता उनका, लेकिन देवता लोग आते हैं फिर भी भेष बदल कर देखने को आते हैं, क्योंकि भगवान के बाल रूप का दर्शन गौलोक वृंदावन में भी नहीं है, इसलिए सब देवता लोग अपना लोक छोड़कर भगवान का बाल स्वरूप देखने के लिए पृथ्वी पर आते हैं जब भगवान जन्म लेते हैं। तो भगवान ने जन्म लिया तो शिव जी आ गए, ऋषि बनकर आ गए। तो मैया को लगा कि अरे पहले तो औरत बनकर आए थे राक्षस, बाद में छकड़ा बनकर आए, बाद में बवंडर बन के आए, बाद में बगुला बनकर आए, बाद में सांप बनकर आए, अभी ऋषि बनकर आया है। मैं नहीं फूलने वाली, मैं नहीं फंसने वाली, ये दान ले लो, नहीं चाहिए तो चले जाओ, ऐसा करके दरवाजा मुंह बंद कर दिया। फिर शिव जी रोए बहुत जाकर। उस वन का नाम है आशेश्वर महादेव, जहां पर यशोदा माई के द्वारा ठुकराए जाने पर भी निराश न होकर शिवजी भगवान ने तपस्या किया, रो रो कर पुकारा। इसलिए हम लोग को जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, निराशा में भी जो आशा को देखता है वो भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेता है। तो वहां पर जाके अभी देखो मैया के कब्जे में है भगवान, जब मैया ने ठुकरा दिया तो आपको क्या चांस है मिलने का, बताओ? सबकी बॉस है वो, नंद बाबा भी बॉस नहीं है, इसलिए यशोदा माई बॉस है। उसने अगर दरवाजा मुंह बंद कर दिया आपको क्या चांस है मिलने का, फिर भी निराश न होते हुए रो रो कर पुकारा है। फिर भगवान बहुत रोए हैं, इतना रोए हैं यशोदा देवी के भी संभल नहीं पा सके। तो फिर सखियों ने बोला अरे वो बाबा को बुलाओ, वो कब से रो रहा है उधर, बहुत चमत्कारी बाबा है वो, बहुत दूर से आया है कैलाश से। तो उसको बुलाया, फिर जब वो आए शिवजी महाराज तो दर्शन दिया भगवान का, जैसे भगवान के पैर को छुआ बालक भगवान के, तो बालक ने रोना बंद कर दिया। मतलब भगवान ने रोने का लीला किया ताकि मैया मान जाए कि मेरे भक्त को दर्शन मिले। तब मैया क्या बोलती है, सुनो ध्यान से सुनो सब लोग, तो मैया क्या बोलती है, अरे बाबा तू तो बड़ा चमत्कारी बाबा है, इतना बच्चा रोया, हमने इतना प्रयास किया, दूध दिया, खिलौना दिया, ये किया वो किया, नचाया खिलाया झुलाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तू आया हाथ लगाया तो बंद हो गया रोना। अरे बाबा तो अच्छा खिलौना है, वो तो इधर ही रहो, इधर ही रहो आप, और जब जब बालक रोएगा तब तब आना और उसको रिजा देना, तुमको मैं यही रखूंगी, पहला प्रसाद तुमको ही दूंगी, लाला के अभिषेक का जल तुम्हारे पे डालूंगी, लाला का भोग का प्रसाद तुमको ही पहले दूंगी, तो मेरे पास ही रहना। तो वो नंदीश्वर पर्वत पर महादेव के रूप में विराजमान है, नंदीश्वर महादेव। मतलब इतने बड़े महादेव है जिन्होंने जन्म दिया उनको ब्रह्मा जी, वो भी उनका पूजन करते हैं, महादेव है वो। तो वो इतने बड़े महादेव, इतना बड़ा काम करते हैं सृष्टि में, लेकिन यहाँ पर कृष्ण के लिए खिलौना बनकर बैठे हुए हैं, समझने वाली बात है। हम लोग इतना गर्व करते हैं, हम लोग इतने बड़े लोग हैं, हम लोग ऐसा कपड़ा पहन के आए, ये कपड़ा पहन के आए, ऐसा करके गाड़ी में घूम रहे हैं। कोई महादेव से महान हो सकता है क्या? इतना महान व्यक्ति जो है भगवान के लिए खिलौना बना है इधर, तो हम लोग को क्या बनना चाहिए फिर? हम लोग को तो मिट्टी की धूल बननी चाहिए यहाँ की। तो शिव जी ने अपने उदाहरण से बताया है, एक तो निराश मत होना, अपना प्रयत्न जारी रखना, और उसके बाद भगवान की सेवा में जो सेवा मिले वो करना। ये बोलना नहीं कि मैं तो मैनेजर हूँ, मैं खाली मैनेजमेंट ही करूँगा मंदिर में आके, मैं तो ये हूँ, मैं तो वही करूँगा, मेरे को तो उतना ही आता है, बाकी नहीं करूँगा। जो मिलेगा वो सेवा, वही, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो क्या आशेश्वर महादेव, वो आपको दिखाएंगे शायद प्रभु जी। फिर यहाँ पर एक पावन सरोवर है, बहुत सुंदर स्थान है, नंद भगवान नंद महाराज का वो प्राइवेट कुंड है, उसका नाम नंद सरोवर था। तो एक दिन नंद बाबा निकले त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए, मैया मटरी बना रही थी, मालूम है मटरी क्या होती है? आप लोग देख सूखा सूखा सा ना नमकीन प्रवास के लिए उपयोग करते हैं उसका। तो बोल रहे कौन जा रहा है प्रवास? बोले बाबा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? त्रिवेणी। क्यों जा रहे हैं? बाबा को पूछा क्यों जा रहे हैं आप? बोले अरे गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी का वहाँ पर बहुत संगम है, इतना बड़ा पुण्य है स्नान करने से, लेकिन दूर है यहाँ से बहुत। तो वो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, बोले क्यों जा रहे हैं आप, कल जाओ कल। तो कल क्या देखा, कल के दिन थी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन जब सुबेरे अपने कुंड में स्नान करने गए, इतना बड़ा प्रकाश दिखाई पड़ा, एक बड़ा राजा जो है वो स्नान कर रहा है, उसके अंदर स्नान करके पानी में भीग के आ रहा है, मट्टी में लोटपोट, हाँ लोड़न घते माटी में वो करके वापस पानी में, फिर मट्टी में, फिर पानी में। तो इनको बड़ा आश्चर्य हो गया, कौन है, इनको देखा तो नहीं क्या पहले। पूछा महाराज जी आप कौन हो? तो बोलता है मैं स्वयं प्रयागराज हूँ। क्या बोला? मैं त्रिवेणी संगम स्वयं यहाँ पर स्नान करने आया हूँ। बोले क्यों? बोलते साल भर में सब लोग मुझ में स्नान करके अपना सारा पाप छोड़कर हमको निस्तेज कर देते हैं, तो साल में एक दिन छुट्टी लेके अक्षय तृतीया के दिन वो सब पाप धोने के लिए इधर सरोवर में हम लोग आते हैं। बोला अच्छा, मैं तो यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, ये तो इधर से इधर आ रहे हैं। फिर देखा उधर साइड में, देखा तो सारी लड़कियाँ सुंदर सुंदर देवियाँ जो है वो स्नान कर रही है। तो जाके पूछा तुम लोग कौन हो? तो बोलते हैं कि मैं गंगा हूँ, यमुना हूँ, सरस्वती हूँ, नर्मदा हूँ, कावेरी हूँ, सिंधी हूँ, भीमा हूँ, इंद्रायणी हूँ, जो जो नाम शरयू हूँ। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोले साल भर में हमारी सेवा है, हम देवियाँ तो हैं लेकिन नदी के रूप में सेवा करते हैं, तो सब लोग पाप छोड़ते हैं हमारे अंदर, तो हम लोग छुट्टी लेकर अक्षय तृतीया के दिन यहाँ आकर सारा पाप धो लेते हैं, निस्तेज बनकर आते हैं, यहाँ स्नान करके तेज को प्राप्त कर देते हैं। तो नंद महाराज ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया, बोला त्रिवेणी नहीं जाएंगे, मटरी घर पे ही खाया सब, समझ में आया आपको? हाँ, अरे इतना बड़ा तीर्थ है उनका खुद का कुंड, सब नदियां स्नान कर रही है अपने आप को शुद्ध करने के लिए, बोलो आप, तो क्यों जाएंगे वो? तो वो उसका नाम पड़ा पावन सरोवर। उस पावन सरोवर पे चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया है। उस पावन सरोवर में एक घाट है जिसमें यशोदा देवी का खुद का प्राइवेट घाट, वो खुद स्नान करते हैं वहाँ पर। उसके किनारे पे उन्होंने राधा रानी के लिए एक मीठे पानी का कुआं बनाया था, वहाँ राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन बना देती थी। चैतन्य महाप्रभु ने किया, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के जो आचार्य हैं उन्होंने वहाँ बैठक करके वहाँ पर भजन किया है। वो कृष्ण का सख्य लीला का नंबर टू का फेवरेट स्थान है, वहाँ पर कृष्ण अपने गायों को बछड़ों को पानी पिलाते हैं, आनंद लेते हैं। भगवान का चरणामृत है, यशोदा माई का चरणामृत है, विश्वभानु नंद महाराज का चरणामृत है, सभी देवियों का चरणामृत है, नदियों का चरणामृत है, त्रिवेणी संगम का चरणामृत है। क्या चाहिए आपको, बोलो? और कोई जाने की जरूरत है क्या? हाँ, और कौन सा बताऊँ? फिर नंद भगवान के मंदिर में आप जा रहे हो? आप नहीं जा सकते प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ आराम से, जाओ दर्शन करो, वो सब सेटल हो गया अभी। हाँ, ढंग से जाओ दर्शन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंद भगवान के मंदिर में दर्शन क्या है, नंद बाबा खड़े हैं, उनके बाजू में बलराम जी खड़े हैं, उनके बाजू में कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण के बाजू मैया खड़ी है, मैया के बाजू बगल में शर्मीली सी राधा रानी बहू बनकर खड़ी है, और नंद बाबा के इस तरफ दो सखा खड़े हैं, धन सुखा मन सुखा, ऐसा सुंदर दर्शन है। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं सब लोग आप? चैतन्य महाप्रभु कितने लोग नहीं जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को? हाथ ऊपर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताऊंगा आपको मैं। हाँ, शायद पता नहीं, कृष्ण भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर अवतार लिया उन्होंने, राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए। उनको भी समझ में नहीं आता है कितना बड़ा प्रेम है वो, तो वो समझने के लिए राधा रानी का भाव लेकर वो आए, और सांवले रंग के बदले में गौर वर्ण में आए, क्योंकि राजा रानी ने अपना गौरव वर्ण दे दिया उनको भाव के साथ। तो उनका नाम क्या है बोलो? चैतन्य महाप्रभु। बोलो जोर से बोलो। एक और नाम है गौरांगा महाप्रभु। बोलो। वो कृष्ण ही है लेकिन सांवले नहीं है, गोरे रंग के हैं। तो वो 2 महीने वृंदावन में आए थे, पूरे 48 साल रहे कलयुग में, आज से केवल 545 साल पहले 48 साल रहे, उसमें 2 महीने वृंदावन में आए थे। 2 महीने वृंदावन में आए थे तो उन्होंने पहले पावन सरोवर में स्नान किया, फिर लोगों से पूछा इधर कोई मंदिर है क्या? तो उन्होंने कहा पहाड़ में एक गुफा है, उधर कुछ मंदिर की मूर्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु पहाड़ पर चढ़े, गुफा के अंदर गए तो उनको एक हष्टपुष्ट बाबा, एक सुंदर माता और एक छोटा बालक की मूर्ति मिली। उन्होंने अंदर बहुत प्रेम से बात किया उनसे, सब ब्रजवासी लोग उनको देखकर हैरान हो गए थे, इतना सुंदर इतना प्रेम से बात कर रहे, मतलब ये कृष्ण ही होंगे, इतना प्रेम से कृष्ण से मैया से बात करने वाला कृष्ण के अलावा कौन हो सकता है? तो सब समझ गए कि कृष्ण ही है। और उन्होंने ना वो कृष्ण की मूर्ति को गले लगाया, मैया को भी गले लगाया। तो उसके बाद में फिर वो मूर्तियां अभी जहां दिख रही है ना, वहां स्थापन किया गया उनको। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये लुप्त मूर्तियों को प्रकट किया जो आज आप देख रहे हैं। बाद में बलराम जी की मूर्ति लाई गई, राधा रानी की मूर्ति लाई गई, संसुका मनसुका की मूर्ति लाई गई, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर दर्शन है। और वहाँ पर नंदीश्वर का दर्शन है, वहाँ पर बाद में एक नरसिंह मंदिर भी है, नरसिंह वराह मंदिर। जब जब कृष्ण पे संकट आता था तब कृष्ण भगवान के पिताजी नंद बाबा कृष्ण की सुरक्षा के लिए वराह नरसिंह की पूजा करते थे, वो वहाँ पर है। फिर नीचे नंद बाबा की गौशाला भी है, उसके आगे एक नंद बैठक है, वहाँ पर नंद बाबा अपने पुत्र को गौचारण करने के बाद में लौट के आने के समय उनको रहा नहीं जाता था कि मेरा बच्चा नीचे आएगा, पर्वत चढ़ेगा, तब तक रुकूंगा कैसे, तो खुद पर्वत उतर के आते थे और एक जगह बैठकर जमीन के स्तर पर ही उनको मिलते थे, उनको गोद में बिठाते थे और पूरा आज क्या हुआ उसका पूरा न्यूज सुनते थे। पर बच्चे का दिल भर गया कृष्ण बलराम का, फिर ऊपर चले जाते थे। तो बैठक में नंद बाबा का चित्रपट है, बड़ा बहुत सुंदर, एक गोद में बलराम जी बैठे हैं, एक गोद में कृष्ण बैठे हुए हैं। उसी के पास में यशोदा कुंड है, यशोदा कुंड में जब कृष्ण भगवान छोटे से थे तो यशोदा कृष्ण को और रोहिणी बलराम को स्नान किया कराती, तो जब बचपन में थे तो वहाँ स्नान करते थे, जब बड़े हो गए तो शर्माने लगे। तो यशोदा माई ने रोहिणी से डिस्कस किया, तुमको क्या लगता है? हाँ मेरा बालक भी शर्मा रहा है। वो बोला मेरा बालक भी समझा रहा, मतलब बड़े हो रहे हैं अभी ना, वो कपड़ा उतारने के समय शर्म आ रही है उनको, तो जो बाकी सब करा लेते हैं जब कपड़े उतारने का समय तो भाग जाते हैं। तो नंद बाबा ने उनके लिए एक और कुंड बनाया जिसका नाम है कृष्ण कुंड, और कृष्ण कुंड में फिर वो अपने आप स्नान करके आया करते थे बड़ा होने के बाद। लेकिन मैया छोटे उम्र में रोहिणी और यशोदा दोनों अपने पुत्रों को वहाँ पर स्नान कराया करती थी। फिर उसके आगे जाएंगे तो एक स्थान आएगा मोती कुंड। ऐसा है ना कि यशोदा माता ने राधा रानी को यहाँ बुला लिया था भोजन कराने के लिए कृष्ण को, उनको वरदान प्राप्त हुआ था ना दुर्वासा मुनि से कि ये कन्या के हाथ से जो भोजन बनेगा अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, जो खाएगा वो रोग से मुक्त हो जाएगा और जो खाएगा वो हमेशा विजयी हो जाएगा। तो इनको लगा अपने बालक को यही कुक चाहिए, हाँ सबसे बेस्ट अपने को चाहिए। तो मैया से परमिशन लिया और रोज का आना जाना शुरू हुआ। अभी बड़ी लंबी कथा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, रोज का आना जाना, रोज राधा रानी को देखना, रोज खाना बनाते हुए उसको देखना, रोज का भोजन का स्वाद लेना, रोज कृष्ण का आनंद देखना। एक दिन भाव विभोर हो गई और गले लगाया, बोली ये रोज का आना जाना क्यों, इधर ही रहो, इधर ही रहना चाहिए तुमको। गले लगाया और हाथ को हल्दी लगा दिया, मतलब क्या होता है उसका, का तुमच्या गावी काय पद्धत आहे, म्हणजे वाघ निश्चय, म्हणजे काय एंगेजमेंट है ना, काय म्हणतो साखरपुडा करून टाकला, आई वडिलांना विचारता। हा तर राधा रानी को बड़ी खुशी हो गई, इतने आंसू भाए प्रेम के, इतने गले लगाया, बोले इससे बड़ी बहू कौन हो सकती है मेरी बेटी के लिए। तो घर पे चले गए तो पता चला, अरे बाप रे, बिना किसी को बोले हुए एंगेजमेंट करके आए तो क्या जूते पड़ेंगे ना घर पे आपके, है ना। अभी आप सब लोग गए किसी को मिलने के लिए, वहाँ पर एंगेजमेंट करके आ गए तो आजकल चलता है सबका, लेकिन वो जमाने में चलता नहीं था ऐसे। तो उन्होंने कुंड में हाथ धोए तो वो कुंड पिला हो गया, वो सबको पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर उन्होंने वहाँ से मोती भेजे उनको, क्या बोलते हैं कि तुमने जो किया वो गुस्सा की जरूर किया, हमको पसंद है वो गुस्सा की हमारे मन में भी वही था, कैसे बात करें, हमको संकोच था, कौन बात चलाए, तुम करें कि हम करें। आपने अभी ये कर ही दिया, मतलब आपको वही करना था, हमें भी मंजूर है, इसके मंजूरी के साथ में हम आपको मोती भेज रहे हैं। बैलगाड़ी भर के 1 लाख मोतियों की माला भेज दी, बोलो, अपना मोतियों का भंडार खोल दिया पूरा। तो मोती आ गए तो उनको चिंता हो गई, अरे इतने बड़े अच्छे मोती हमारे पास तो नहीं है रिटर्न में देने के लिए, है ना, अभी तुमने कुछ भेजा हमको भी देना चाहिए, हमको भी मंजूर है तुमने जो किया। बहुत टेंशन था उनको, वो लोग क्या सोचेंगे, नंदगांव का यही रिवाज है क्या, यही पद्धति है क्या, यही संस्कार है क्या, यही कल्चर है क्या तुम्हारा, ऐसा सोच रहे थे वो। कि वो सोच के हमारी दीदी जो है कीर्ति दीदी और विश्वानु महाराज क्या सोचते होंगे। लेकिन जब उनके तरफ से जब बैलगाड़ी भर के 1 लाख मोती की माला आई तो क्या है, जीव भांड्यात पड़ला, अरे बाप रे, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बट रिटर्न में भेजने के लिए हमारे पास उतने अच्छे मोती नहीं है। कृष्ण बोला उसमें क्या है, थोड़ा मोती मुझे दे दो, मैं खेती करूंगा उसकी और मोती पैदा करूंगा और दे दूंगा उनको। तो बोले बच्चा है ना, ये इसको क्या मालूम कैसा है, मोतियों की खड़ी खेती होती है, मैं तो मोती कहाँ मिलते हैं, मोती कहाँ मिलते हैं, समुद्र में कहाँ मिलते हैं, शिमले के अंदर मिलते हैं, एक बच्चा को कैसे मालूम। फिर भी कृष्ण ने रात को कुछ माला चोरी करके तोड़ के मोती जमीन में डाले, उस पर घी डाला, उसमें दूध डाला, दही डाला, ब्रज की मिट्टी डाली, और अगले दिन आया तो बोले अरे मैं कुछ मानी तो गायब है यहाँ से माला। तभी तुम्हारा देखो, अभी तुम्हारे घर में चोरी हुई, समझो अभी यशोदा माँ के घर में चोरी हुई, तो पुलिस चौकी में जाने की जरूरत है क्या, बताओ, चोर तो घर में बैठा हुआ है, पुलिस में आने की जरूरत क्या है, उसको भी पकड़ा, किधर है मोती, क्यों चोरी किए तुमने। बोला मैया चोरी नहीं की है, मैंने लिए, चोरी नहीं की है, मैंने जाके खेत में, अरे बाप रे इतने कीमती मोती तुमने खेती में बोए, अरे मैया आ जाओ उधर लहर रहा है खेत पूरा मोतियों से। तभी क्या कर गया, बाल हट्टे को क्या समझ में नहीं आता है, मैंने कुछ धान्य बनना दिया होगा और धान्य आया होगा, तो वो हाथ पकड़ के खींच के लेके गए तो क्या देखते हैं, पूरा खेत जो है वो मोतियों से लहर रहा है, हरि बोल। तब जाकर हंसा नहीं, वो पहले हंस रहे थे, बहुत बालक है बालक है, तब हंसना वसना बंद, तुरंत मोती बिनना चालू, तुरंत मोती इकट्ठा करना चालू कर दिया, बैलगाड़ी भर के भेज दिया उसको। तो जहां पर कृष्ण भगवान ने मोती बोकर मोतियों का खेती किया था, उस जगह का नाम है मोतीकुंड, मोतीकुंड धाम की। फिर वो मोती वहां भेजे, फिर राधा रानी ने वो मोती जमीन में डाले और क्या बनाए, मोती बनाए नहीं, मोती डाल के हीरे बनाए, हीरों की खेती किया। तो बोलो ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि उन्होंने मोती का मोती बनाया, उन्होंने मोती का हीरा बनाया, उसका नाम रत्न कुंड है, डभारा गांव में वो कुंड है, बहुत सुंदर कुंड है रत्न कुंड, उसके किनारे पे राधा रानी ने मोतियों से हीरों की खेती की थी। उसके बाद में आपको छाछ कुंड, हरे नंद बाबा के गांव में 56 कुंड है, एक एक करके लुप्त हो रहे हैं भाई, इतना वैभव था, इतना वैभव था कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था ना, इतने मक्खन के गोले फेंके, इतने मक्खन के गोले फेंके, सब सुन रहे हैं ना, और ये सब मोरी में जाके अटक गए, मतलब जहां उधर नानी ट्रैप। उसके बाद दूध दही इतना फेंका, वो तो गोला जाके उधर फिक्स हो गया, कोई नीचे नहीं उतर रहा है, तो सब जमा हो गया ना, तो बोलते नंद के आंगन में दही मक्खन का समुद्र पैदा हो गया, कमर तक दही मक्खन, दही दूध सबका समुद्र बन गया। इतने खुश थे सब लोग, बोले ग्वाल बाल बाबा बच्चा का जन्म हो गया है, डांस करो डांस। तो बहुत बुढ़े थे वो, बोले डांस करना नहीं आता मुझे, कैसे डांस नहीं करोगे, आपके बालक का जन्म हो गया है। तो यहाँ से एक फेटा लगाया, एक घुमाया गोल, दूसरी तरफ लेके गए, मतलब क्या हुआ, गोल घुमा के एक डोरी इधर, एक एंड इधर, एक एंड उधर, और खींचा उनको कैसा, समुद्र मंथन की तरह। तो बाबा को नाचना नहीं आता, लेकिन पेट को बांध कर उनको बना दिया मेरु पर, मंदार पर्वत बना दिया, और उनको गोल 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 घुमाया जैसे समुद्र मंथन हो रहा है, ऐसा आनंद है नंदगांव में। तो वैसे ही आप लोग दही बनाते हो, फिर उसको मथनी करते ना, मथन क्या करते उसको, अपन तो कर दो ना दही मंथन, उसके बाद में मक्खन निकलता है, फिर छाछ बनता है, फिर छाछ हमको लोगों को पिलाते हैं, मक्खन रख देते हैं, फिर घी बनाते हैं उसका। तो ब्रज में आज भी रिवाज है कि मक्खन लोग बेच सकते हैं, घी भी बेच सकते हैं, लेकिन छाछ नहीं बेच सकते, क्योंकि छाछ बेचना मतलब अति दरिद्री हो गया वो, अगर छाछ बेचने का नौबत आ गया मतलब तुम गया दीवाड़खोरी फुल। इसलिए आज भी गरीब से गरीब आदमी भी ना मट्ठा या दही या अपना छाछ जो है ना वो फ्री में देता है। गांव गांव में हमने अनुभव किया है, 2,000 लोगों को ब्रजवासियों ने फ्री में छाछ पिलाया है। तो मैया जबी मक्खन निकालकर छाछ को जबी डालती थी यहाँ से वहाँ, तो जो छाछ गिरता था वो गिर गिर के पर्वत से इकट्ठा होकर छाछ कुंड बना। कितना छाछ, कितना वैभव हो सकता है, देखो आप सोचो जरा। इतना वैभव था कि छाछ का कुंड बना था जमीन के स्तर पर, पर्वत से नीचे आता हुआ जो छाछ इकट्ठा हुआ, ऐसे 56 कुंड है वृंदावन नंदगांव के धाम में। उसके बाद में एक जगह है मोर कुंड, उसका नाम उस जगह पर कृष्ण भगवान मोर बनकर नाचे थे, इसलिए वहाँ पर मोर बिहारी का मंदिर है, बहुत सुंदर। एक ललिता कुंड है जहाँ पर ललिता देवी ने आकर कृष्ण भगवान को स्नान करा के दुल्ला बनवाया था, और दुल्ला बनाकर एक गांव ले गई थी जिसका नाम है पैनावली, वहाँ पर कपड़े पहनाए थे। एक गांव ले गई थी उसका नाम है कजरोठा, काजल कुंड है वहाँ पर, वहाँ पर भगवान को काजल लगाकर श्रृंगार किया था और दुल्ला बनाकर सजा धजा कर श्रृंगार करके राधा रानी को प्रेम सरोवर में मिलने को ले गए थे वो। तो वो हो गया ललिता कुंड। उसके बाद में एक जगह है उद्धव क्यारी, बहुत सुंदर स्थान। उद्धव क्यारी में उद्धव जब आए थे, उद्धव जी जब आए थे ना, तो मैं आपको वो कथा जरूर सुनाऊंगा विस्तार में। ठेर कदम का बाकी रह गया, बराबर, वेरी गुड, पहले उसके सुनाता हूँ। तो ठेर कदम में क्या होता है, अभी कल हो गई एकादशी, 3 दिन पहले क्या था, 4 तारीख को गोपाष्टमी, गोपाष्टमी पहले वाले अष्टमी, ये वाले अष्टमी गोपाष्टमी। इस दिन भगवान, जिस दिन, जिस कार्तिक में 5 साल के हो चुके थे, मतलब अगस्त में उनका जन्म होता है ना, जो जुलाई अगस्त में, मतलब भाद्रपद में उनका जन्म होता है, बराबर प्रभु जी, नहीं श्रावण के वध्य अष्टमी को जन्म होता है, मैं अपना परीक्षा ले रहा हूँ, आप लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं सब लोग। श्रावण के वध्य अष्टमी जो जनरली जुलाई अगस्त में आती है, तो जब भगवान 5 साल के हो गए तो घर में बहुत हल्ला मच गया, वन में हल्ला मच गया, सब लोग कृष्ण को चिढ़ाने लगे कि तू तो अभी तक बच्चा ही है, तेरे को, तेरे ऊपर तेरे बाबा को विश्वास नहीं है, इसलिए अब देख बच्चों को ही तुम्हारे को देके रखा है और पास पास में घुमाने का परमिशन दिया है, बड़ी गाय को घुमाने का तुम्हारे ऊपर उनका विश्वास नहीं है इसलिए नहीं दिया है, ऐसे बच्चे लोग ने उनको बहुत दिन तक सताया। अभी आपने आज बोला, कहीं बोला, अभी तुम समझो तो अपनी बीवी को बोलेंगे तेरे को क्या बनाने को नहीं आता है, आज देखो दाल बिगाड़ दिया, कल बोलेंगे चावल बिगाड़ दिया, परसों बोलेंगे सब्जी बिगाड़ दिया, उसमें बोलेंगे सूप बिगाड़ दिया, उसके बोलेंगे वो बिगाड़ दिया, तो बीवी का तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा कि मैं कुछ बना ही नहीं पाऊंगी इसके आगे, मैं जो कुछ भी बनाने को आता है, हर बार वो टीका करते हैं, हर बार बोलते ये क्या दाल है क्या, देखो वो शादी में खाई थी क्या टेस्ट था उसके अंदर, फिर बोले मूंग की बनाऊं कि तुअर की बनाऊं कि दाल की बनाऊं कि किसकी बनाऊं, हर को टीका करेंगे तो वो फिर खाना बनाने का विश्वास ही खत्म हो जाएगा, उस आत्मविश्वास। तो कृष्ण भगवान बहुत रोए, बहुत बालकों ने उनको रोज रोज छेड़ा, कई दिन तक छेड़ा। इधर से गाय भी बोल रही है अपने गाय वालों को, मतलब गोपालों को, कि हमको ना अभी तुम्हारे साथ चरने को बोर होता है, हमको कृष्ण के साथ जाना है, सब हमारे बछड़े घूमते हैं बताते हैं आके क्या क्या हुआ, हमको इतना आनंद सुन के आता है, हमारा भाग्य कब खुलेगा, तब हमको उनके साथ देंगे, इनकी चर्चा भी हो रही है, वो भी चर्चा कर रहे हैं, अरे गाय भी बोल रही है। और घर में फिर एक दिन चर्चा हुई कि अरे ये भी खाना हमारा बड़ा हो गया है, गैया बोल रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो बता रहा है कि मैया मुझे तुम गाय का जिम्मेदारी क्यों नहीं देते हो, तो बोल रहे तो अभी छोटा है, तो बच्चे बोलते बोला था ना उनको विश्वास नहीं है, तो बालक ही ये बच्चा है अभी तक, मतलब देखा ना कैसा कॉम्प्लिकेट हो गया, इधर भी मार उधर भी मार। बीच में ना एक बार और गड़बड़ हो गया था, बताता हूँ आपको, वो गड़बड़ ऐसा था कि सब ग्वाल बाल जब कृष्ण आए ना, बच्चे बछड़े को घुमा रहे ना, सब बच्चे बच्चे ही खे, सब लोग ना हंस रहे पेट पकड़ के, समझो मैं अभी आया कथा करने के लिए और वो बैठा और मुझे देखे सब लोग हंस रहे, सब लोग हंस रहे, कुकु 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 हंस रहे, हंस रहे, पेट पकड़ के हंस रहे। बोले राजगोविंद प्रभु क्या हो रहा है कि हंस क्यों रहे लोग, तो वैसे सब लोग हंस रहे। तो उसने बोला क्या हुआ, बोलता है वो इतनी मज़ेदार बात है कि हम बता नहीं सकते आपको, इतना फनी है, फनी मतलब क्या, इतनी मज़ेदार बात है, इतना जोक बड़ा है कि हम लोग उसको बोल नहीं सकते। तो कृष्ण का कुतूहल बड़ा, तो बोले क्या हुआ, ऐसा क्या चीज़ है। बाद में ना बहुत हंस के हंस के थोड़ा शांत हो गए ना, तो उन्होंने बोला, अरे अरे तुम तो यशोदा और नंद के बालक है ही नहीं, बाप रे, आपके लिए जोक है, उसके लिए तो शौक है, पूरा बड़ा शौक है, इलेक्ट्रिक का 500 वाट का स्टॉक लिख गया उसको, क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, हमको हमारे पास कहानी पूरी, पूरा रिपोर्ट है हमारे पास, नंद बाबा यशोदा माई उनको पुत्र नहीं था, कई दिन से पुत्र नहीं हुआ, एक दिन मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए, जब लौट के आ रहे थे तो एक बच्चे के रोने की आवाज आई, तो उन्होंने देखा इधर उधर को मिला, दिखा नहीं इधर, बहुत ढूंढा, लेकिन एक पेड़ के पास आवाज आ रही थी जोर से, तो पेड़ के अंदर देखा तो एक बालक, ऐसे सब बालक कृष्ण को बोल रहे हैं, सुनो ये कहानी बालक कृष्ण को बोल रहे हैं कि जब तेरे मैया बाबा ने ढूंढा तो उनको पेड़ के अंदर एक काला बालक रोते हुए नजर आया, बहुत रो रहा था काला बालक, तो नंद बाबा यशोदा को दया आई, बेचारा काला बालक है, अकेला माता पिता दिखते नहीं किधर, बेचारा भूखा भी होगा, कोई सहायता नहीं होगी, तो उन्होंने दया से तेरे को उठा के लेके आया, तू वो है, उनका बालक नहीं है, क्योंकि देख देख तू देख, यशोदा माई गोरी, नंद बाबा भी गोरे और तू काला, ये कैसे हो सकता है, अभी यशोदा, अभी रोहिणी मैया गोरी इसलिए बलराम जी गोरे, और तू एक ही काला, मतलब तुम्हारे घर में तुम है ही नहीं इधर, तुम्हारा नंबर ही नहीं इधर। तो कृष्ण को इतना रोया, कृष्ण इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, घर पे आगे इतना रोया, मैया मुझे बोल रहे कि तुम्हारा पुत्र नहीं हूं मैं, वो समझा रही है उनको, ऐसा नहीं है बाबा, तू मेरा ही पुत्र है, तू मेरा ही पुत्र है, अरे तो क्या हुआ ना, वो बलराम जी दोपहर में आया था तो वो गोरा है, तू रात में आया था तो काला हो गया। अभी क्या बच्चे को समझाए, कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा ना, तू बीच रात में आया तो अभी तेरा डिलीवरी रात को बीच में हो गया तो तू काला हो गया, वो दिन में ही 12 बजे जन्म हो गया उसका, तो वो गोरा है, ऐसा कर करके बहुत समझाया, बहुत समझाया, फिर वो नहीं बेटा तू मेरा ही पुत्र है, बोला मम्मी नक्की ना। अभी एक बार मार खा के हो गया था उसका, ऊपर से बाद में बोल रहे कि तेरे को बच्चे बड़े गाय का ताकत नहीं संभालने का। फिर उन्होंने तय किया, सप्तमी के दिन बहुत उसको चिढ़ाया, और सप्तमी के दिन घर पे जब ये गाय चला रहे, बच्चे चला रहे, घर पे डिस्कशन हो गया, शांडिल्य मुनि आ गए, मुहूर्त निकाला, बोला कल का दिन अच्छा है, दे दो गाय का भार उसको, और सब तैयारी घर पे हो रही है, और खुशखबरी अपने बच्चे को बताना है उसको कि बेटा कल से तुम्हें हम गाय का चार्ज दे देंगे। लेकिन बच्चा इतना रो रो के आया, सुधा सो गया, बात नहीं किया, स्नान नहीं किया, मक्खन नहीं खाया, दूध नहीं पिया माँ का, कुछ नहीं किया उसने, उल्टा मुंह करके सो गया, इतना नाराज हो गया था वो, अभी खबर कैसे देंगे उसको, सब तैयारी हो रही है, सब तैयारी, गाय बाय सज के आ गए सब लोग, सबको मालूम पड़ गया ना सब गाय लोगों को, कल से हमको जाना है, तो गाय भी सज के आ गए सब लोग, कृष्ण भगवान उठे ही नहीं। फिर उसके बाद में ग्वाल वालों को ना रोज सुबह कृष्ण क्या करते हैं, नंदगांव में जैसे उठते ना मुरली बजाकर अलार्म देते सबको, मुरली बजा मुरली का अलार्म सुनते ना तो सब ग्वाल बाल झट से उठ के तैयार होकर आ जाते हैं। इस दिन मुरली का अलार्म बजा ही नहीं, लेकिन जब भी हमको सुबह उठने की आदत होती है तो अलार्म ना बजने के बाद भी जाग आ जाती है, आती कि नहीं आती है हमको। आप विचार करें, यात्रा से बहुत थक गया हो, मैं कल 4 बजे नहीं उठूंगा, मुझे 6 बजे उठना है, और 6 बजे का अलार्म लगाया, फिर भी जाग 4 बजे आती है। आदत अच्छी लगाने से दूर दूर तक लाभ होता है, इसलिए ब्रज में रहना है, भक्त बनकर बम्बई में, लातूर में, जालना में रहना है, सुबह जल्दी उठना भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। अगर भक्त बनकर आपको सुबह उठने को नहीं आता है तो हम भक्त नहीं है। भक्त का प्रभुपाद जी ने कहा था, भक्त मतलब जल्दी उठना, अंधेरे में उठना, अंधेरे में स्नान करके रेडी होना, और सूरज का उगते हुए दर्शन करना, पूरे स्वच्छ होकर भगवान का नाम लेते हुए सूरज को प्रणाम करना, ये हमारी संस्कृति है। तो मुरली नहीं बजी, अलार्म नहीं बजा, फिर भी वो झज झज कर जल्दी आके तैयार हो गए, और खबर मिली कि कान्हा अभी तक सोया हुआ है। फिर जाकर बाबा ने बोला, उसके कान में जाके बोलो, आज तुमको बड़ी गाय का जिम्मेदारी देने वाले है। तो जैसे ही ऐसा बोला ना, वो स्प्रिंग की तरह उड़ा बेज में से, और एक्सप्रेस तैयारी किया उस दिन फटाफट एकदम, हाँ बाकी तो आराम से गीत गाते हुए, आज एकदम एक्सप्रेस तैयारी हो गया, और लाया उनको, और बड़े ही समारंभ पूर्वक उनको गायों का यज्ञ वज्ञ करके, पूजन करके, गाय का जिम्मेदारी दिया गया। लास्ट में रत्न की भरा हुआ जो छड़ी ना, छड़ी गाय को चढ़ाने का लकुटी, वो दे दिया विधि पूर्वक मंत्र बोलते हुए, और मंत्र उच्चार करते हुए गौचारण चालू हो गया। अभी देखो मैया को टेंशन है ना, अभी लाला दूर जाएगा तो दूर में कांटे होंगे, पत्थर होंगे, पैरों को लगेगा, तो जूता लेकर आई वो। और दूर धूप लगेगी दोपहर की, पहले बच्चों को लेकर दोपहर को लौट के आना था ना खाना खाने के लिए, लंच के लिए। ये भी अभी शाम को लौट के आएंगे, लंच वहाँ खाएंगे, तो धूप भी लगेगी, तो छतरी भी लेके आई। तो ये बोला कि आपके पास में सभी गाय के लिए जूता होगा क्या? कितनी लाख गाय थी नंद बाबा की? 9 लाख खाली उनके पास थी, बाकी अलग, उन बाकी उपनंद बाबा की अलग, सुनंद की अलग, अभिनंद की अलग, नंदन चाचा की अलग, सबकी अलग, अपने अपने गोपालों की अलग। तुम्हारे पास 36 लाख जूता है और 9 लाख छतरी है तो बोलो, नहीं तो मैं नहीं। बोला हमारे पास नहीं, हमारे पास 2 जोड़ी जूता है, 2 छतरी है, तुमको लेना है, हमको नहीं लेना है। हाँ, भगवान बताते हैं कि जैसे गाय रहती है वैसे गाय वाले को रहना चाहिए। उसका सुंदर श्लोक भागवत में भी है, हाँ, यथा गावो तथा गोपाल, जैसे गाय रहती है वैसे गोपाल को रहना चाहिए। ये हमारे ब्रज का कल्चर है। तो हम आपका जूता रिजेक्ट कर देते हैं, घर पे ही रखो, हम नंगे पैर चलेंगे, तो और टेंशन आया उनको। ये सब उसी दिन हुआ निकलने समय। तो अभी जा रहे हैं वो, तो उसके पीछे भी यशोदा भी जा रही है, नंद बाबा जा रहे हैं। तो कृष्ण बोलते, मैया अभी जाओ भी ना, कितना देर तक आओगी? हमको भी प्राइवेट जगह चाहिए ना अपनी। अभी तुम लोग अभी कितना साथ में हमारे आओगे, हमको सुपरवाइज करते रहोगे? हाँ, तुम आओगे तो बोलेगे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर पैर मत रखो, इधर लगेगा, उधर संभाल के, इधर उड़ी मत मारो। हमको भी अपना स्पेस चाहिए, स्पेस, जगह चाहिए जहाँ पर किसी का नियंत्रण ना होगा, हम अपनी मन मर्जी करेंगे। इसलिए मैया अभी जाओ भी ना, आप जाओ भी ना। वो फिर मैया फिर उधर ही रुक गई, सोच रहे आप चल रहे साथ में, उधर रुक गई। सब गाय बछड़े उनके साथ में, उनको बीच में रखते हुए सब चले गए। उधर ही आंखों में आंसू लेकर खड़ी हो गई नंद बाबा, यशोदा माई, और घर में चले गए। उस दिन बहुत दूर चले गए, फिर वो थक गए। कृष्णा पहली बार दूर गए थे ना, थक गए, तो चेहरे में थकान दिखती कि नहीं? अभी यात्रा करके लोगों को थकान दिखती है ना, बहुत दिन यात्रा घूम घूम के परिक्रमा दे के आ रहे, तो चेहरे में लगता है। तो ग्वाल बाल क्या बोले कि देखो, अगर कृष्ण का थका हुआ चेहरा मैया ने देखा तो क्या होगा बताओ? बोले कल नहीं जाएगा ये, वो थक गया है, इतना लंबा उसको जमेगा नहीं। तो इसका चेहरा थका हुआ दिखना नहीं चाहिए। तो आते समय उन्होंने ना गीत गाना, जोक मारना, मजा करना, हास्य परियास करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है हंसने से क्या होता है? हंसने से चेहरे का रक्त प्रवाह बढ़ता है। सब लोग हंसो। ऐसा पेट में दबाव आता है ना, हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं सब। पेट में दबाव आएगा ना तो चेहरे पर रक्त प्रवाह बढ़ता है, फिर रौनक बढ़ती है, थका हुआ आदमी भी फ्रेश लगता है। तो इन्होंने बहुत उनको हंसा हंसा के ना फ्रेश फोश खसाया। फिर वो एक जगह पर आए, उसका नाम है कदम्ब, टेर टेर कदम पे आ गए। अभी घर के बहुत पास में है, गैया यहाँ वहाँ बिखरी हुई है, साथ में नहीं है। तो ये टेर कदम के ऊपर चढ़े, एकदम लास्ट में चढ़े, और वहाँ पर मुरली बजाया उन्होंने। मुरली में 8 स्वर होते हैं, 8 छेद 8 स्वर। छठवा स्वर गाय के लिए होता है। जब छठवें स्वर में बजाते हैं ना तो किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। हाँ, तुमसे नाम क्या है? मीना। तुमसे नाम क्या है? दर्शना और मीना। समझा, या गाय है, समझा, 2 मिनट अगर समझा, गाय है। तो इन लोग को खाली मीना और दर्शना ये सुनाई पड़ेगा। जितनी गाय है उनका नाम उनको सुनाई पड़ेगा, और किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसा जादू है मुरली में भगवान के। वो छठा स्वर बजाएंगे ना तो सब गायों को अपना अपना नाम सुनाई पड़ेगा कि कृष्ण बुला रहे हैं। तो भगवान ने छठा स्वर बजाया, ऊपर बैठ के सारी गाय अपना नाम सुनकर भाग के आई उस पेड़ के पास, कान ऊपर, आंख ऊपर, पूंछ भी ऊपर, मुंह खुला, इतना मंत्र मुग्ध होकर आए वहां पर। फिर भी कुछ गाय ने ना सुनकर भी अनसुनी कर दी, है ना? अपने बच्चे कैसे रहते, खेलते रहते, अरे सुरेश लवकर ये रे बाबा आले जवायला, तो कुछ ऐक तो चला, ऐकू देत नहीं, ऐकून पण ऐकू येत नहीं, है ना? तो कुछ गायों को लगता है कि नहीं नहीं सुनेंगे हम। तो फिर भगवान उतरते हैं, बाकी सब गाय को बोलते हैं आप उधर रहो, मैं आता हूँ। और उन गायों को खुद जाकर थपथपा के लेके आते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए ना, इसलिए वो मुरली मुरली उनके लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वो खुद जाकर लेके आते हैं। फिर वो पेड़ के पास में सबको इकट्ठा करके फिर वहां से निकलते हैं नंद भवन जाने के लिए। तो नाम क्यों पड़ा टेर कदम्बा? क्योंकि टेर यानी पुकारना, भगवान ने वहां बैठकर टेर लगाई थी अपनी मुरली से और गायों को बुलाया था, इसलिए उस कदम का नाम पड़ा। अरे जोर से बोलो, टेर कदम पे भगवान ने बैठकर सब गायों को बुलाया। ऐसा सुंदर जगह है वो, वहां पर भगवान ने रोज वहां पर गाय को भगवान लेकर आते हैं, आज भी अपने को दिखता नहीं है लेकिन रोज भगवान गाय को लेकर आते हैं, मुरली बजाते हैं। तो ये गोपाष्टमी की कथा है। इस गोपाष्टमी कथा को इधर सबसे बड़ा उत्सव दो है, एक जन्माष्टमी और एक गोपाष्टमी। दुनिया में नंदगांव का ब्रजवासी किधर भी रहेगा ना, ये दो उत्सव को लौट के आएगा। उससे भी दोनों में से और कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है बोलो? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का उत्सव मिस नहीं करेगा, किधर भी अमेरिका में होगा तो लौट के आएगा और गोपाष्टमी का उत्सव का आनंद लेगा। तो ये टेर कदम की जगह है, ठीक है। वहाँ सब गायों का, भगवान के पास 108 झुंड थे गाय के, कोई कोई काजल के रंग की थी, कोई गोरी रंग की थी, कोई भूरे रंग की थी, कोई धूमर मतलब ऐश राख के रंग की थी, कोई सफ़ेद रंग पर काला तिलक, कोई काले रंग पर सफ़ेद तिलक, तिलक ही नहीं, कोई मृदंगिनी। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर गायों का झुंड था, 108 झुंड था। बीच में एक बताना भूल गया आपको बात, वो ऐसा हुआ कि अभी इधर संवाद हो रहा है ना माता पिता और उनके बीच में कि अरे तू जूता ले और ये ले और छतरी ले, और वो बोला नहीं लूँगा नहीं लूँगा, तू ले ले नहीं लूँगा नहीं लूँगा, ये सब डिस्कशन जो हो रहा ना चर्चा, वो गाय सब लोग सुन रहे हैं। वो बाद में उनको पता चला कि ये चप्पल तो पहनने वाला नहीं है, छतरी लेने वाला नहीं है। तो गाय लोगों ने कहा कि अब बाप रे, अभी ये दूर जाएगा तो पैर में कंकड़ लगेंगे, कांटे लगेंगे, पत्थर लगेंगे। तो वो चर्चा जब हो रही है तब ये भाग गए सब दिशा में, और गाय ने अपने चार चार खोरों से लेकर सबको कूट कूट कर, कूट कूट कर कांटे पत्थर कंकड़ सब पाउडर बना दिया। देखो कितना मुलायम है ना, ऐसा बना दिया पूरा, ताकि किधर से भी जाने का निर्णय लेगा ना ये बालक, फिर भी पैर को मुलायम मक्खन जैसी मट्टी लगेगी। ऐसा करके वापस लौट के आए हो और अपनी जगह पे अपने ग्रुप में खड़े हो गए, और उन्होंने मीटिंग किया उधर ग्वाल वालों के साथ। अभी जब ही वो कूट कूट कर आ रहे थे ना, तो कृष्ण के मन में प्रति इतना मन में प्रेम था कि उनके थनों से दूध बह रहा था। जब ही कूट रहे ना, प्रेम से कूट रहे ना कि इसके पैर को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो थनों से दूध बह रहा है। तो क्या हो गया, वो मक्खन सी मुलायम जो रज थी उसके अंदर गिर गया दूध, तो मक्खन जैसा ही मुलायम और ठंडा ठंडा बन गया। अभी आप चलेंगे उसके ऊपर तो निशान बनेगा ना, उसके ऊपर गीला ठंडा मुलायम मक्खन जैसा। तो उन्होंने मीटिंग करके तय कर लिया कि अभी आज के आगे इस पर कृष्ण बलराम जब चलेंगे तो उनके चार चरण चिन्ह बनेंगे सब जगह पर, चार 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 हजारों लाखों करोड़ों बनेंगे, हम लोग उस पर पाँव नहीं देंगे, क्योंकि ये ब्रज का अलंकार है। कृष्ण बलराम के चरणों का चिन्ह, राधा रानी के चरणों का चिन्ह जो है, ये ब्रज भूमि का सबसे बड़ा अलंकार है। इसलिए उन्होंने मीटिंग किया और तय किया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतने करोड़ों ग्वाल बाल थे, इतने करोड़ों गाय थी, इतने करोड़ों बकरियां भैंसे सब कुछ थे उसके अंदर, फिर भी उन्होंने कैसा पैर नहीं दिया उसके ऊपर, ये भी एक रहस्य की बात है। और ये ब्रज का रहस्य है, और वो चरण चिन्ह कुछ कुछ अभी भी बने हुए हैं, आपको कामेवन में मिलेंगे, बठेन में मिलेंगे, नंदगांव में मिलेंगे, सब जगह पर भगवान के चरण चिन्ह हैं, गोवर्धन में मिलेंगे, जहाँ जहाँ भगवान ने चले हैं और उनके चरण चिन्ह बने हैं। तो अभी उद्धव क्यारी, थोड़ा सा उद्धव क्यारी, उद्धव जी थे ना, कितने लोग जानते हैं उद्धव जी को बताओ, हाथ ऊपर करो। उद्धव जी जानते, देखो ऐसा है, मैं आपको ऐसा मतलब आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग कैसे, अरे वो शरद पवार जब मुलीचं नाव काय रे, तो नवऱ्याचं नाव काय, आणि शाहरुख खानच्या बायकोचं नाव काय, आणि अमित खानच्या बायकोचं नाव काय, हे सब अपने को मालूम रहता है, बट भगवान का परिवार का पूरा परिचय आपको होना चाहिए कि भगवान के परिवार में कौन कौन है। वो हमारा रियल परिवार है, जब यहाँ से काम खत्म करके जाएंगे ना, हमारे ओरिजिनल परिवार को मिलेंगे हम लोग। तो नंद बाबा के कितने भाई हैं? पांच है कि चार है? पांच है कि चार है? अरे चार है भाई उनके, वो मिलकर पांच है। दो बड़े भाई हैं मेरे साथ, सब लोग बोलेंगे, सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? उपनंद। मेरे बाद में जोर से बोलना है, उपनंद। सेकंड भाई का नाम है अभिनंद, उसके बाद नंद, उसके बाद सुनंद, उसके बाद नंदन, और दो बहने हैं सानंदा और नंदिनी, पांच भाई और दो बहने। ठीक है, एग्जैक्टली हमारे घर में भी ऐसा ही है, पांच भाई और दो बहने। तो बीच वाले नंद महाराज है। हर एक के घर में एक एक पत्नी है ना, नेचुरली पांच, तो हर एक भाई को दो दो बालक हुए, तो टोटल कितने कजिन ब्रदर हो गए? कजिन ब्रदर कितने पूछ रहा हूं? आठ। तो वो आठ जो है वो कृष्ण के सखा बने, अष्ट सखा, और दो इनके कृष्ण और बलराम, मिलकर दस हो गए। समझा आपको? ये ऐसा ही था, आप चार है के पांच, वैसे आठ है के दस, वही है ये रहस्य। तो उद्धव जी जो थे वो कृष्ण के मतलब अपनी आत्या से ना, आत्या चुलत आत्या, तिचा मुलगा उद्धव, आणि आत्या आणखीन एक होती कुंती, आणखीन एक आत्या होती शिशुपालची आई, अशा बरेक बरेच त्यांचा वसुदेव आणि त्यांचे भाऊ बहीण होते। म्हणजे सगळ्यात मुख्य कोण? परजन्य महाराज, त्यांचा पुत्र हे पाच पुत्र त्यांचे, उनके पाच पुत्र थे। तो परजन्य के एक भाई थे शूरसेन, क्योंकि उनके पिताजी थे ना देवमीड, वो देवमीड का एक बीवी थी क्षत्रिय, उससे हुए शूरसेन, और उससे हुए वसुदेव और कुंती, वो सब भाई सब। और एक थी वैश्य यानी गोपाल, गोपी पत्नी थी उनकी, वरीयसी नाम है उनका, वरीयसी। उनके पांच पुत्र ये और दो बहनें है ना। तो वैसे कृष्ण की एक और एक कजिन आत्या थी ना, उसका पुत्र था उद्धव। इतना वो भाग्यशाली था कि कृष्ण का मथुरा में द्वारका में सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था? उद्धव। उसका शरीर का रंग भी कृष्ण के जैसा ही सांवला था, उसका दर्शन भी कृष्ण के जैसा ही था, वो कृष्ण का परम मित्र था, वो कृष्ण का सबसे बड़ा मंत्री था, सलाहकार, और खाना पीना रहना उठना सोना शिकार खेलना सब कुछ उनके साथ में करता था। बृहस्पति का शिष्य था वो, जो देवताओं का गुरु हैं उनके शिष्य है, मतलब इतना परम ज्ञानी, इतना परम भक्त। और आपको भक्ति में क्या चाहिए? भगवान का साथ चाहिए ना, तो दिन रात भगवान का साथ, मतलब अपने भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच गया था वो, ऐसा महान व्यक्ति था। तो भगवान ने उसको वृंदावन में भेजा गोपियों को मैसेज देने के लिए, मैया बाबा को मैसेज देने के लिए, क्योंकि भगवान भी ना उधर द्वारका में बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। जैसे रुक्मिणी अपना भाग्य, लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी है वो, उधर भोजन करके खिला रही है, अपने खुद हवा कर रही है, अभी इतना परफेक्ट खाना खिला रही है, 56 भोग खिला रही है, लेकिन कृष्ण भगवान रो रहे हैं। तो आप बोलेंगे स्वामी क्या हुआ, ज़्यादा मिर्च पड़ी क्या, नमक कम हुआ क्या, क्या आप हमसे नाराज़ है क्या, हमारी सेवा आपको पसंद नहीं आ रही क्या? बोले नहीं सुखमिणी, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तुमने इतना प्रेम से बनाया इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं है जो मेरी मैया कड़क खाना खुद चबा कर उसको पतला करके मुँह से निकाल के मुझे खिलाती थी, वो स्वाद इसमें कैसे आएगा। फिर रात को अपने उठ रहे हैं, पत्नी के साथ सो रहे हैं, हर एक महल में 16108 हर एक महल में एक एक रूप रह रहा है उनका। रात को उठकर रो रहे हैं जोरों से, ललिता विशाखा इंदुलेखा, गाय की याद करके रो रहे हैं। तो वो बोलते थे महाराज हमारी सेवा में कुछ कमी है क्या, बताओ। बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी उनके साथ तुलना कैसे कर सकते हैं हम। बड़ी लंबी लंबी कथा है। एनीवे तो रोते थे, ये भी रोते थे, ये भी रोते थे यहाँ पर। तो उन्होंने एक बार उद्धव जी को भेज दिया, अभी जा तू एक मेरा लेटर लेके जा, उनको जरा सांत्वना करके आना। तो उद्धव जी यहाँ पर आए हैं, और इनका प्रेम, लंबी लंबी भागवत में कहानियाँ हैं, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। इनका प्रेम देखकर उद्धव जी पूरा पिघल गए, कंप्लीट पिघल गए। जो भी उनको थोड़ा बहुत गर्व था कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, मंत्री हूँ, संतरी हूँ, जो भी कुछ था, इतना ज्ञानी हूँ, उनको मैं सांत्वना दूंगा, ज्ञान दूंगा, योग सिखाऊंगा, सब फेल हो गए यहाँ पर। और वो स्तब्ध हो गए, मतलब क्या, निःशब्द हो गए, उनके मुंह से शब्द निकला नहीं, क्या बोलेंगे उनको वो, इतना प्रेम देखकर। एक कहानी बताओ आपको मैं, एक कहानी उनके प्रेम की। हाँ, आए वो तो नंद भवन में आए, और पूछ रहे नंद बाबा कहाँ रहते हैं, यशोदा माई नंद बाबा से मिलना है। तो ग्वाल बाल भी ऐसे रोते हुए, सब रो रहे ग्वाल बाल कृष्ण की विरह में, बोलते हैं कि ये दो नदियाँ पहाड़ से आ रही है, इनके किनारे किनारे चढ़ के जाना तो नंद भवन आ जाएगा। अभी अच्छा है ना एड्रेस, अच्छा बता दिया कैसे जाना है। तो वो दो नदियों के किनारे किनारे चढ़कर गए ऊपर, तो वो नंद भवन से नदी आ रही थी, तो वो अंदर भी चले गए, तो क्या देखा, एक नदी नंद बाबा के आंसुओं की है, एक नदी यशोदा माई के आंसुओं की है। जब से कृष्ण गए हैं तब से रोना बंद नहीं हुआ है, तब से अश्रु प्रवाह बंद नहीं हुआ है, तो दो नदियां बह रही है उनके। वो दंग रह गया देख के, इतना प्रेम कभी द्वारका में अनुभव नहीं किया, कि मथुरा में अनुभव नहीं किया। तो वो फिर गोपियां मिली, तो गोपियां उनको उद्धव क्यारी नाम के जगह पर ले गई। तो गोपियों ने कहा कि देखो हमारा जो आपको बोलना है ना, इन रिस्पॉन्स आपने खत दिया, उसके बाद जो भी आपको बताना है वो हम लोग पब्लिक में नहीं बता सकते हैं, इसलिए जंगल में बहुत सुनसान जगह पे ले गए, उसको पत्थर पे बिठाया आसन बनाकर, और अपनी दिल की बात बोलना शुरू किया। हम लोग कल अभी एक गोस्वामी के घर पे गए थे, तो उनके बड़े दीवार पर एक चित्रपट देखा हमने, उसमें उद्धव जी राधा रानी से बात कर रहे हैं, हाँ, और सभी गोपियाँ कोई उधर उल्टा सो रही है, कोई रो रही है, कोई नाच कर रही है, कोई हंस रही है, कोई कुछ पागलों की तरह व्यवहार, ऐसा पूरा माहौल था उसके अंदर। क्योंकि जब कृष्ण को अपने दिल की बात बताने के लिए वो बोलना शुरू किया ना, तो वो एकदम कुछ रो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कोई कुछ ड्रामा कर रहे हैं, कृष्ण का एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो सब देखकर उद्धव जी पूरा हैरान हो गए कम्प्लीटली। उनको समझ में नहीं आया कि क्या प्रेम है इसका। पूरा स्टोरी सुना उन्होंने गोपियों के मुख से, और ध्यान में आया कि मैं इनकी सांत्वना नहीं कर सकता, मेरे में कोई शक्ति नहीं है इनकी सांत्वना करने की, लेकिन जब ये कृष्ण के बारे में मुझे सुना रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि अपने दुख को भूल रहे हैं ये लोग। जब कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो विरह सब दुख भूल रहे हैं, हंस रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं अरे यहाँ पर हमने अगासुर को मारते हुए देखा, यहाँ पर हमने उनको ये करते हुए देखा, यहाँ पर डांस किया, यहाँ पर माखन चुरा, यहाँ पर पकड़ा उनको। तो जब ये स्टोरी उनको एक्टिंग करके सुना रहे हैं तब वो दुखी न होने का अनुभव हुआ कि तभी ये दुखी नहीं होती है। इसलिए जो समझाने आए थे वो चुप हो गए, और जिनको समझाना था वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, 6 महीने तक उन्होंने पूरा ब्रज उनको घुमाया। अभी ये यात्रा में कितना वक्ता लोग है बताओ, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, एक टाइम पे कितने वक्ता बोलते हैं, एक ही वक्ता बोलते हैं, और बहुत सारे लोग सुनते हैं। वो यात्रा में करोड़ों गोपियाँ वक्ता थी और एक यात्री था उद्धव, और 2 दिन के लिए आया था खत देकर लौटने के लिए, कुछ समझा बुझा के जाने के लिए, 6 महीना रुका, और खाली उनसे उनके ही मुख से सारी ब्रज की बातें कृष्ण लीला सब सुनते रहा। शास्त्र में लिखा है कि गोपियों के संग में उद्धव जी कृष्ण को भूल गए। 6 महीने के एंड में राधा रानी ने उनको याद किया, अरे तुम्हारा सखा तुमको याद करता होगा, जाओ भी तुम, तब को कृष्ण की याद आई। इतना गोपियों का प्रेम है कि गोपियों के संग में से कृष्ण को भी भूल गए। वो कृष्ण की बातें सुन रहे हैं लेकिन गोपियों के प्रेम में पूरा पिघल गए वो पूरा। तो उनका ये था ना, लास्ट में उनका भाव क्या था बताओ, एकदम लास्ट में जब निकल रहे थे तो उनका भाव ये था कि ये गोपियों के चरणों की धूल मुझे लेना है, लास्ट का उनका भाव ये था। पहले बहुत सारे भाव थे, सब फेल हो गए, एंड में एक ही भाव था कि मुझे किसी भी तरह इन गोपियों के चरणों की धूल लेनी चाहिए, लेकिन अगर मैं कृष्ण के रथ पर बैठ के आया हूँ, कृष्ण का मुकुट पहनकर आया हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, अधिकारी पुरुष हूँ, मंत्री हूँ, ये मुझे अपने आप चरणों की रज नहीं देंगे, और मैं उनको जबरदस्ती रज लेना नहीं चाहता, मैं सहजता से उनके चरणों की रज लेना चाहता हूँ। और जब मैं उनके साथ 6 महीने घूम रहा था तब मैंने देखा कि इन गोपियों को घास के पत्तों पर चलने में कोई संकोच नहीं था, एकदम आराम से बिना संकोच वो घूमती थी, और घास के पत्तों पर इनके चरणों की धूल अनायास ही गिर जाती थी। तो मैं अभी तपस्या करूँगा और घास का पत्ता के रूप में जन्म लूंगा, और उस पत्ते के रूप में जन्म लेंगे लेंगा लूंगा तभी ये गोपियाँ मुझ पर चलेंगी और अनायास ही उनके चरणों की धूल मुझ पर आएगी। ये सब सोचकर वो चला गया, भगवान को रिपोर्ट दिया क्या क्या हुआ, और जाने लगा तो भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैं जा रहा हूँ ब्रज में। क्यों जा रहे हो, बोले तपस्या करने जा रहा हूँ। क्या तपस्या कर रहे हो, बोले तृण का पत्ता बनने के लिए। आम तौर पे छोटे पद से ऊंचे पद पर जाने के लिए हम तपस्या करते हैं। 2 लोगों ने उल्टी तपस्या की है, एक ब्रह्मा जी ने और उद्धव जी ने। ब्रह्मा सबसे टॉप पर है, वो टॉप पोजिशन छोड़ के पत्थर बनने के लिए तपस्या किया, उद्धव जी टॉप पर थे, वो इधर तृण का पत्ता, घास का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया, और तपस्या करके उनको घास के पत्ते का जन्म मिला है, और वो कुसुम सरोवर पर रहते हैं आज भी, और वहीं पर उन्होंने कृष्ण की रानियों को कृष्ण के जाने के बाद में संग दिया है, और भागवत सुनाकर कृष्ण की रानियों को वहीं से उन्होंने गोलोक धाम भेजा है। ऐसे उद्धव जी यहाँ पर उद्धव क्यारी स्थान पर गोपियों को मिले थे। क्यारी का मतलब है बैठने की जगह, उद्धव क्यारी मतलब जहाँ पर उद्धव को बिठाया गया था उस स्थान को उद्धव क्यारी कहते हैं। और एक बहुत ही रहस्यमय बात है कि उस जगह पर गोपियों ने ऐसे ऐसे भाव प्रकट किए कि उद्धव जी ने सोचा कि ये जगह इतनी पावरफुल है कि यहाँ पर ब्रज के भक्तों का हृदय का भाव प्रकट हुआ है, तो कोई पापी व्यक्ति, कोई ऐसा अयोग्य व्यक्ति जो लायक नहीं है इसके, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसलिए उद्धव जी ने अपने हाथ से पूरे ब्रज में कांटे बोए हैं बबूल के झाड़, ताकि बबूल के कांटों का दर्द सहन करते करते जो आएगा वही श्रद्धालु होगा, नहीं तो भाग जाएगा। इसलिए उद्धव जी ने कब तक कांटे बोए हैं। हम लोग जब सबसे पहली बार गए थे उद्धव क्यारी, तो क्या बताऊं, केवल यहाँ से वो मंदिर है उतना अंतर था, और हमको 3 घंटे लगे थे यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि रास्ते में पानी भरा हुआ था और अनंत करोड़ों अब्जो खरबों कांटे थे उसके अंदर। एक पाँव रखेंगे तो 5 जगह कांटे घुसेंगे, फिर सब लोग हाथ पकड़ के ऐसे पाँव कांटे निकालते, दूसरा कदम फिर कांटे, तीसरा कदम फिर कांटे, ऐसे करते करते 3 घंटे के बाद में हम लोग बैठे थे, पहुँच गए थे उधर रात में। उसके बाद में महाराज ने वहाँ पर कथा किया था, और महाराज के पाए में भी बहुत सारे कांटे थे, और वहाँ पहुँचने के बाद तो बहुत जगह तो वो चला, सर्जिकल आइटम चला, मतलब ऑपरेशंस सबके कांटे निकालने का, कोई टॉर्च लेके बैठा है कांटे निकाल रहा है, कोई आ ओ कर रहा है, ऐसे बहुत देर के बाद सबके कांटे निकल गए, फिर वहाँ पर कथा हुई। अब याद है ना, सब कुछ याद क्यों आया, क्योंकि पैर में कांटे घुसे थे ना, इसलिए वो स्थान हमको याद है, वो घटना कभी भूलेंगे नहीं। उसके बाद 50 बार उद्धव कुंड गए, लेकिन वो घटना कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए ब्रज में आपको लगेगा कि अरे बुरा अनुभव आया, इधर ऐसा हुआ उधर ऐसा हुआ, गिर गया पट्टी मारना पड़ा, लेकिन उसी से आपको ब्रज की याद आएगी, वही जख्म आपको ब्रज की याद दिलाएगा कि यहाँ पर मैं गिरा था, मेरा भैया बोलेगा सुनहरे गाँव में मैं गिरा था। उसी तरह से ब्रज में ऐसी याद करो आप कि आपको दिन रात ब्रज की याद घर में बनी रहे। आपका ब्रज का निवास ऐसा बनाओ कि ब्रज को आपके घर में ले, दिल में लेके घर चले जाओ, और उस दिल में बसे हुए ब्रज को याद करो, वही ब्रजवास है। आपको हर टाइम यहाँ आना अच्छा है, लेकिन हर टाइम यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसे रहो, इस तरह से यहाँ पर रहो जो ब्रज का कथा, ब्रज का दर्शन आंखों के माध्यम से, ब्रज की कथा कानों के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से प्रसाद का टेस्ट, कानों के माध्यम से कीर्तन की टेस्ट, ये सब यहाँ पर समा लो और यहाँ पर बसा कर घर में चले जाओ, और फिर दिन रात याद करो कैसे गए। इसलिए मैं बोलते हैं कि लिखो, क्योंकि लिखने से आपको याद आएगा। जब ट्रेन में बैठेंगे तो चर्चा करो, वो दिन किधर गए थे, 6 तारीख को उधर प्रभु ने क्या बताया था, 7 तारीख को कहाँ गए थे, 8 तारीख को कहाँ गए थे, 10 तारीख को कहाँ गए, 9 तारीख को कहाँ गए थे, और चर्चा करते 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 मुंबई जाओ, मतलब ट्रेन में भी आप वृंदावन में ही हो विचार के भाव से रूप में। ऐसे ब्रज यात्रा करना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे ब्रज यात्री थे, अमेरिका गए, परदेश गए, लेकिन हृदय में वृंदावन को लेकर गए थे, और लोगों को वृंदावन का संग का अनुभव दिया उन्होंने, और हमको भी वैसा ही संग करना चाहिए। एक बार नहीं, यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं अपने महाराष्ट्र में ना ऐसा एक है, आमचं वृंदावन झालं, आमचं तिरुपती पण झालं, रामेश्वर पण झालं, आमचं द्वारका पण झालं, म्हणजे काय, एकदा जायचं आणि मग परत कधी जायचं नाही, पण धाम यात्रा आम्ही अनंत वेळा करतो। म्हणून आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसी जगह पर बार बार आकर वही कथा सुनना है, उससे उस कथा का गहरा और गहरा और गहरा भाव आपको समझ में आएगा, हर बार नया नया अनुभव आएगा उसी जगह का, हर बार उसी जगह का आपको सार मालूम पड़ेगा, और गहराई से आपको वृंदावन धाम का आनंद मिलेगा। इसलिए हमको बार बार आना है, ऐसा नहीं कि ये हो गया और वो हो गया इधर भी हाजिर लग गया, वैसा नहीं है। उसी को कहते हैं धामवास, हर साल करना है, सारी कथाओं को आत्मसात करना है, और उसी के ध्यान में फिर शरीर छोड़ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।